आगे सबक देखिए भाई, बाबु कत्अत तरीक। قال وإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة। भाई गुज़श्ता सबक के अंदर बाबु मा युहदिसु सारिक फी सरिका हमने शुरू किया था। मैंने आपको बतलाया कि बाज़ औकात चोर जो है माले मसरूका के अंदर कोई तब्दीली कर देता है या उसमें अपनी कोई कारीगरी दिखाता है, तो जिसकी वजह से उस माले मसरूका के अंदर कमी आ जाती है या उसके अंदर ज्यादती आ जाती है, यानी उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा अगर चोर इस किस्म की तब्दीली माले मसरूका के अंदर कर दे? तो साहिब हिदायत इसको बयान फरमा रहे हैं इस बाब के अंदर। पहला मसला साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाया कि अगर एक शख्स चोरी करने गया और वहीं पर उसने उस माल के अंदर कसीर नुकसान कर दिया और फिर उस चीज को लेकर वहां से निकला, तो तरफैन फरमाते हैं कि अगर उस माल की कीमत उस कसीर नुकसान के बाद भी 10 दिरहम या इससे ज्यादा है तो इस चोर का हाथ काटा जाएगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं कि इस कसीर नुकसान की वजह से इस माले मसरूका के अंदर चोर के लिए सबबे मिल्कियत पैदा हो चुका है, और जब कोई शख्स ऐसे माल को चुराए कि जिसके अंदर उसके लिए सबबे मिल्कियत पैदा हो चुका हो तो उसका हाथ नहीं काटा जाता। मैंने आपको बतलाया था कि अगर कोई शख्स किसी की कोई चीज गसब कर ले और उसके अंदर वो नुकसान पैदा करे, तो अगर वो थोड़ा सा नुकसान है तो फिर इस सूरत में मालिक को वही चीज वापस लेना पड़ेगी और उसके साथ वो नुकसान का जमान ले लेगा। मालूम हुआ इस सूरत के अंदर मालिक उस गासिब को उस चीज का मालिक जबरन नहीं बना सकता, जबकि अगर इसके मुकाबले में उस गासिब ने उस चीज के अंदर कसीर नुकसान कर दिया तो फिर इस सूरत में शरीयत ने मालिक को इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो यही चीज वापस ले ले और उसके साथ नुकसान का जमान भी गासिब से वसूल कर ले, और अगर मालिक चाहे तो ये चीज उसी गासिब के पास छोड़ दे कि ये तुम ही रखो, तुम ही इसके मालिक हो गए हो, मुझे मेरी चीज की पूरी कीमत अदा कर दो। तो मालूम हुआ नुकसान कसीर की सूरत में मालिक गासिब को उस चीज का मालिक बना सकता है। तो यही बात इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि जब चोर ने उस चीज के अंदर नुकसान कसीर कर दिया तो अब यहां एहतमाल आ गया कि मालिक जो है वो इस चीज की पूरी कीमत ले ले और इसी को उस माल का मालिक बना दे, तो सबबे मिल्कियत आ गया उस चोर के लिए, इस माल में सबबे मिल्कियत आ गया। और जाबता है कि जब माले मसरूका के अंदर चोर के लिए सबबे मिल्कियत आ जाए तो उसका हाथ कता नहीं किया जा सकता। वो फरमाते ये इसी तरह है जैसे एक मुश्तरी ने बाय से वो मबीआ चोरी कर लिया जिसके अंदर बाय ने खियारे शर्त रखा हुआ था। मैंने आपको बतलाया कि बाज औकात बाय या मुश्तरी में से कोई एक अपने लिए खियारे शर्त रख लेता है कि मैं ये बेह तो तुम्हारे साथ कर लेता हूं लेकिन मुझे 2-3 दिन तक इख्तियार होगा, मैं इस बेह को फसख करना चाहूं तो फसख भी कर सकता हूं। और मैंने आपको बतलाया था कि अगर खियारे शर्त जो है वो मुश्तरी रखे तो मबीहा मुश्तरी की मिल्क में दाखिल हो जाता है, और अगर खियारे शर्त बाएं रखे तो फिर मबीआ मुश्तरी की मिल्क में दाखिल नहीं होता। तो यहां पर भी खियारे शर्त बाएं ने रखा है, जब बाएं ने रखा है तो मबीआ मुश्तरी की मिल्क में दाखिल नहीं हुआ और इस मबीए को मुश्तरी ने चोरी कर लिया, तो बिल इत्तेफाक इस मुश्तरी का हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि ये अगरचे उस मबीए का मालिक तो नहीं लेकिन उस मबीए के अंदर इसके लिए सबबे मिल्क पैदा हो चुका है क्योंकि इसने इस चीज की बया की है बाकायदा। भाई तो एहतमाल है कि ये मालिक बन जाए अगर बाय ने बे फसख ना की। भाई तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे इस मुश्तरी का हाथ नहीं काटा जा सकता क्योंकि इसके लिए माले मसरूका में सबब मिल्कियत आ चुका है, इसी तरह यह जो चोर जिसने कसीर फटन वाला कपड़ा उठाया इसके लिए भी इस माल के अंदर सबब मिल्कियत आ चुका है भाई। जबकि तराफेन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि नहीं, हमें आपकी बात तस्लीम नहीं है, ये जो खर्के कसीर के साथ चीज को उठाना है ये सबब मिल्क नहीं है बल्कि ये सबब जमान है, इसकी वजह से इस आदमी पर जमान आएगा और अगर मालिक ने जमान लेने को इख्तियार कर लिया तो फिर ये चोर इस माल का मालिक बन जाएगा। तो बहरहाल इस कसीर फटन वाला अखस जो है यह सबब जमान है, सबब मिल्कियत नहीं। ये क्या है? सबब जमान है। हां वो अलग बात है कि यह जमान फिर मिल्कियत तक पहुंचा देगा। तो इस तरह का अखस जो है वो जमान का सबब है और वो जमान जो है वो मिल्कियत तक पहुंचा सकता है अगर मालिक ने जमान लेने को इख्तियार कर लिया, क्योंकि इस सूरत में जब मालिक जमान ले रहा है तो मालिक जमान का मालिक बन गया, तो कहना पड़ेगा चोर जो है वो माले मसरूका का मालिक बन गया, वरना तो दोनों बदलैन का एक ही मिल्कियत में जमा होना लाजिम आएगा। अगर आप कहें कि जमान अदा करने के बावजूद चोर इस माले मसरूका का मालिक नहीं बना, तो मालूम है माले मसरूका का मालिक वो मसरूक मिनहू है और जमान का मालिक भी वो मसरूक मिनहू हो गया, तो बदल और मुबदल दोनों का मालिक एक ही शख्स हो गया, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। बदल और मुबदल जो है वो एक शख्स की मिल्कियत में जमा नहीं हो सकते। तो मालूम हुआ इस खर्के कसीर के साथ इस कपड़े को उठाना ये सबब जमान है, सबब मिल्कियत नहीं। हां अलबत्ता ये जमान मिल्कियत तक पहुंचा सकता है। तो लिहाजा आपको इस मसले को मुश्तरी के मसले पर कयास नहीं करना चाहिए। मुश्तरी के मसले में तो वहां सबब मिल्कियत पैदा हो गया था क्योंकि उसने बाकायदा बै की थी और बै को वजह ही मिल्कियत के लिए किया गया है। जब कोई शख्स कोई चीज खरीदता है तो उसका मालिक बन जाता है। तो लिहाजा आपका इस चोर के मसले को मुश्तरी के मसले पर कयास करना सही नहीं, क्योंकि मुश्तरी के मसले में सबब मिल्क है और इस चोर के मसले में सबब मिल्क नहीं है बल्कि सबब जमान है। बल्कि इस मसले को कयास करना चाहिए बाए के मसले पर कि सूरत यह कि एक बाए ने एक ऐबदार मबीआ मुश्तरी को फरोख्त कर दिया और आप जानते हैं कि ऐब की वजह से मबीआ बाए को वापस किया जा सकता है, तो मालूम हुआ यह ऐब जो है यह सबब रद्द है, इसकी वजह से वो चीज वापस की जा सकती है बाए को, और बाए को जब वो चीज वापस की जाएगी और अपने समन ले लिए जाएंगे तो बाए दोबारा इस ऐबदार मबीआ का मालिक बन जाएगा। बात समझ में आ गई। मालूम हुआ ऐब सबब रद्द है और ये रद्द पहुंचा देता है मिल्कियत तक, लेकिन बहरहाल ऐब सबब रद्द है खुद सबब मिल्कियत नहीं। तो लिहाजा ये बाय जिसने ऐबदार मबीआ फरोख्त किया है ये बाय अगर इस मबीआ को चोरी कर ले तो बिल इतफाक इस बाय का हाथ काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि इस मबीआ के अंदर सबब रद्द तो मौजूद है सबब मिल्क मौजूद नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इसमें सबब मिल्क मौजूद नहीं है, जैसे इस चोर के मसले में सबब जमान तो मौजूद है सबब मिल्कियत मौजूद नहीं है, तो इसका भी हाथ काटा जाएगा। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि यह इख्तिलाफ उस सूरत में है कि जब मालिक उसी चीज को वापस ले ले और साथ नुकसान का जमान भी वसूल कर ले, फिर चोर का हाथ काटा जाएगा तरफेन के नजदीक और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक हाथ नहीं काटा जाएगा। और अगर मालिक ने वो कपड़ा चोर ही के पास छोड़ दिया कि ये कपड़ा तुम ही रखो मुझे इसकी कीमत दे दो, तो फिर इस सूरत में जब वो पूरे कपड़े का सामान ले रहा है तो चोर के लिए उस माल के अंदर सबब मिल्कियत आ गया, लिहाजा इस सूरत में बिल इतफाक फिर इस चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। और नी साहिब हिदाय ने यह भी आपको बतलाया कि यह जो इख्तिलाफ गुजरा और जितनी तफसीलात जिक्र हुई यह उस सूरत में है जब चोर ने नुकसान कसीर किया हो उस चीज के अंदर, क्योंकि अगर नुकसान कलील किया है तो फिर इस सूरत के अंदर मालिक जो है पूरी चीज का जमान नहीं ले सकता, बल्कि मालिक को वही चीज वापस लेना पड़ेगी और साथ वो नुकसान का जमान भी लेगा। तो चोर के लिए इस सूरत में सबब मिल्क नहीं पाया गया। जब सबब मिल्क नहीं पाया गया तो इस सूरत में बिल इतफाक सबके नजदीक हाथ काटा जाएगा। भाई मालूम हुआ नुकसान कलील के अंदर बिल इतफाक चोर का हाथ काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि यहां चोर के लिए सबब मिल्कियत मौजूद नहीं है। भाई और फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि यहां आपके जहन में इश्काल आएगा कि आपने कहा कि तरफैन के नजदीक हाथ उस सूरत में काटा जाएगा जब मालिक उस चीज को वापस ले ले और साथ वो जो चोर ने नुकसान किया है उसका जमान भी ले ले, तो फिर इस मालूम है इस सूरत में हाथ भी काटा जाएगा और मालिक वो नुकसान का जमान भी ले लेगा। हालांकि आपने हमें बताया था कि जमान और कता इकट्ठे नहीं हो सकते, तो मैंने आपको बतलाया था कि मालिक ये जो जमान ले रहा है ये उस चोरी की वजह से जमान नहीं ले रहा, बल्कि ये चोर ने एक अलग फेल किया चोरी से पहले कि उसने कपड़े को फाड़ दिया है। तो मालूम हो यह जमान चोरी का नहीं है बल्कि वो उस अलग जुर्म का है जो चोर ने चोरी से पहले किया। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा इस जमान के साथ कता जमा हो सकती है। भाई बात समझ में आ गई? और फिर उसके बाद साहिबे हिदाया ने बतलाया था कि अगर एक शख्स जो है चोरी करने के लिए घर में दाखिल हुआ और वहां एक भेड़ बकरी मौजूद थी, इस चोर ने उसको जिबा किया और फिर उसको लेकर घर से निकल आया, तो इस सूरत में भी चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा अगरचे उस गोश्त की कीमत 10 दिरहम से ज्यादा ही क्यों ना हो। वजह यह है कि आपने जाब्ता पढ़ा था कि वो चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं जिन्हें महफूज करके नहीं रखा जा सकता तो उनके अंदर कता नहीं है, और ये गोश्त भी उन्हीं चीजों में से है, ये भी जल्दी खराब हो जाता है तो इसमें भी कता नहीं होगा। और उसके बाद फिर साहिबे हिदाया ने वो सूरत जिक्र फरमाई कि जिसके अंदर चोर माल के अंदर ऐसी तब्दीली करता है जिसमें हमारे अइम्मा का आपस में इख्तिलाफ है। मसलन एक चोर ने निसाब के बकदर सोना या चांदी चोरी किया और फिर इसको दिरहम और दीनार की शक्ल दे दी, तो इमाम साहब के नजदीक इस तब्दीली के बावजूद उन दिरहमों और दीनारों का मालिक यही मसरूक मिनहू है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि यहां चोर ने बड़ी तब्दीली पैदा कर दी उस चीज के अंदर, यहां तक कि उस चीज का नाम ही बदल गया। पहले इसको सोना और चांदी कहते थे, अब इसको दिरहम और दीनार कहते हैं, तो नाम ही बदल गया, नीज मकासिद बदल गए। सोना और चांदी उसके तो और भी मकासिद हैं, जेवर वगैरह बनाए जाते हैं, जेबो जीनत के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दिरहम और दीनार इनके जरिए तो बैउ शिरा की जाती है, तो दोनों के मकासिद भी अलग अलग हैं। लिहाजा चोर इस माल का मालिक बन गया, चोर इस माल का मालिक बन गया, तो अगर यह चोर पकड़ा गया तो यह दिरहम और दीनार मालिक को वापस नहीं किए जाएंगे साहिबैन के कौल के मुताबिक। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि अगरचे अब इसका नाम बदल गया है, अब इसको दिरहम और दीनार कहते हैं, लेकिन यह नाम लाजमी नहीं है, इन दिरहम और दीनार को दोबारा पिघलाकर आम सोने और चांदी की शक्ल दी जा सकती है, और नीज ये चीज भी वही है हुक्म के एतबार से, जैसे दिरहम और दीनार जो है वो समन है, इसी तरह सोना और चांदी जो है वो भी समन है, उनको पैदा ही बतौर समन के किया है, तो लिहाजा दिरहम और दीनार अगर समन है तो सोना और चांदी भी समन ही है भाई, और नीज इनको आसानी से पहली हालत की तरह वापस बदला जा सकता है, तो लिहाजा अभी भी मालिक का हक इनसे मुनकतिया नहीं हुआ। और फिर यह भी बतलाया साहिबे हिदाया ने कि अगर यह चोर पकड़ा गया तो इमाम साहिब के नजदीक उसका हाथ भी काटा जाएगा और यह दिरहम और दीनार भी वापस किए जाएंगे क्योंकि ये अभी भी उसी मालिक के हैं भाई। तो इमाम साहिब के कौल पर तो कोई एतराज नहीं होता क्योंकि उनके नजदीक जब चोर इसका मालिक नहीं बना तो उसका हाथ काटना सही है, जबकि साहिबैन के नजदीक क्या चोर का हाथ काटा जाएगा या नहीं काटा जाएगा तो फुकाहा दोनों तरफ गए हैं। बस फुकाहा फरमाते हैं कि इस चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता क्योंकि यह हाथ के काटने से पहले ही इस चीज का मालिक बन चुका है, जबकि बास फुकाहा फरमाते हैं कि नहीं, इस चोर का हाथ भी काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि इसकी कारीगरी की वजह से अब यह चीज ही बदल गई, पहले आम सोना और चांदी थी और अब ये दिरहम और दीनार हैं, तो चोर जिस चीज का मालिक बना है वो और है, और जो इसने चोरी की थी वो और है, तो जिस चीज को चोरी किया था ऐन उस चीज का तो ये मालिक नहीं बना, ये तो दूसरी चीज का मालिक बना है, लिहाजा इस सूरत में भी इसका हाथ काटा जाएगा। और उसके बाद फिर हमने मसला पढ़ा कि मसलन एक शख्स एक सफेद कपड़ा चोरी कर लेता है और फिर उसको सुर्ख रंग दे देता है, तो इस सूरत में शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक चोर इस कपड़े का मालिक बन गया, क्योंकि चोर का हक इस कपड़े में जाहिर के एतबार से भी आ गया कि कपड़े का रंग बदल गया, और माना के एतबार से भी इसके अंदर चोर का हक आ गया कि कपड़े की कीमत बढ़ गई, मसलन पहले 10 दिरहम का था अब यह 15 दिरहम का हो गया है। तो शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं अगर यह चोर पकड़ा गया तो इसका हाथ काटा जाएगा, अलबत्ता ये कपड़ा उससे वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये चोर इस कपड़े का मालिक बन चुका है, इस कपड़े का मालिक बन चुका है, और अगर ये कपड़ा चोर के पास हलाक हो गया तो फिर चोर से जमान नहीं लिया जाएगा क्योंकि कता और जमान इकट्ठे नहीं हो सकते, तो जब चोर का हाथ काटा गया है तो अब इससे जमान नहीं लिया जा सकता। और मैंने बताया था इस पर आपके जहनों में इश्काल पैदा होगा कि अगर चोर इस कपड़े का मालिक बन गया है, शेखैन रहमहुमल्ला क्या फरमाते हैं कि अगर यह कपड़ा चोर के पास मौजूद हुआ तो वापस नहीं लिया जाएगा, मालूम हुआ चोर इस कपड़े का मालिक बन चुका है, जब मालिक बन चुका है तो फिर तो चोर का हाथ नहीं काटना चाहिए, लेकिन शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं हाथ काटा जाएगा। तो मैंने आपको बतलाया था कि वजह यह है कि जो चीज चोर ने चोरी की थी वो और थी, जिसका मालिक बना है वो और है, चोरी जो किया था वो सफेद कपड़ा था और सफेद कपड़े का तो ये मालिक नहीं बना, ये तो सुर्ख कपड़े का मालिक बना है, तो जो चीज चोरी की थी उसका मालिक नहीं और जिस चीज का मालिक बना है वो और चीज है, लिहाजा इस चोर का हाथ काटा जाएगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस चोर से यह कपड़ा ले लिया जाएगा और उस मालिक को वापस किया जाएगा, यानी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक चोर की इस कारीगरी के बावजूद मालिक का हक इस कपड़े से खत्म नहीं हुआ, लिहाजा यह कपड़ा मालिक को वापस किया जाएगा, अलबत्ता इस रंग की वजह से कपड़े की कीमत बढ़ गई है तो वो जो कीमत बढ़ी है वो मालिक से लेकर फिर इस चोर को दिला दी जाएगी। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इस मसले को कियास करते हैं गसब पर, गसब के अंदर अगर एक शख्स दूसरे का इसी तरह कपड़ा चोरी कर ले और फिर उसको रंग दे दे तो वहां पर वो रंग देने की वजह से वो शख्स उस कपड़े का मालिक नहीं बनता बल्कि वो कपड़ा वापस करना पड़ेगा उसे, और इस रंग की वजह से कपड़े की कीमत में जो ज्यादती आई है वो मालिक से वसूल कर लेगा। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिस तरह गसब के मसले के अंदर रंग देने की वजह से गासिब कपड़े का मालिक नहीं बनता तो चोरी के अंदर भी चोर इस कपड़े का मालिक नहीं बनेगा। और इल्लत जामिया यह है कि असल जो है वो कपड़ा है और रंग जो है वो इसका वसफ है, इसके ताबेअ है, तो कपड़ा जो मालिक का हक है यानी असल है जब वो मौजूद है तो सिर्फ वसफ की वजह से चोर या गासिब को इसका मालिक करार नहीं दिया जा सकता। जबकि शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर चोर माल का मालिक बन चुका है और गसब के मसले में गासिब मालिक नहीं बनता, तो दोनों मसलों में फर्क है, लिहाजा आप एक को दूसरे पर कयास नहीं कर सकते। वजह यह कि चोरी के मसले के अंदर जब चोर ने कपड़े को रंग दे दिया तो अब कपड़े के सूरत के एतबार से भी चोर का हक आ गया कपड़े में कि कपड़े का रंग बदल गया, और माना के एतबार से भी चोर का हक आ गया कपड़े के अंदर क्योंकि कपड़े की कीमत बढ़ गई, तो सूरतन भी चोर का हक आ गया कपड़े में कि उसका रंग बदल गया, और माना के एतबार से भी चोर का हक आ गया कपड़े के अंदर कि उस कपड़े की कीमत बढ़ गई। जबकि मालिक का हक जो है वो सिर्फ सूरत के एतबार से है, माना के एतबार से नहीं। क्या माना? सूरत के एतबार से, यानी चीज तो वही है, कपड़ा तो वही है, तो लिहाजा इस एतबार से देखा जाए तो मालिक का हक अभी भी इस कपड़े के अंदर है, लेकिन माना के एतबार से मालिक का हक नहीं है। क्या माना? यानी अगर यह कपड़ा चोर के पास हलाक हो जाए तो चोर पर जमान नहीं आएगा, मालूम हुआ माना के एतबार से मालिक का हक खत्म हो चुका है और सूरत के एतबार से मालिक का हक बाकी है। तो मालिक का हक सिर्फ सूरत के एतबार से है, माना के एतबार से नहीं, और चोर का हक सूरत के एतबार से भी है और माना के एतबार से भी है। सूरत के एतबार से किस तरह? कि वो रंग जाहिर नजर आ रहा है और माना के एतबार से चोर का हक किस तरह है कि उस कपड़े की कीमत बढ़ गई है, हत्ता कि अगर यह कपड़ा मालिक को वापस किया जाएगा तो जो जायद पैसे हैं वो चोर को दिलाए जाएंगे भाई। तो यहां पर मालिक का हक सिर्फ सूरतन बाकी है और चोर का हक सूरतन भी है और मानन भी है, लिहाजा इसलिए चोर को तरजीह दी जाएगी और कहेंगे कि चोर ही इस कपड़े का मालिक बन गया। तवज्जो है, और यह ख्याल रखना सूरत और माना ये दोनों जगह लफ्ज आ रहा है तो आप एक ही माना ना करें। जब हम चोर की निस्बत से सूरत और माना कहें तो सूरत से क्या मुराद है, वो जो रंग हमें नजर आ रहा है, और माना से क्या मुराद है, उसकी कीमत है। सूरत भी रंग भी मौजूद है और माना के एतबार से भी चोर का हक आ गया कि कपड़े की कीमत बढ़ गई। और जब मालिक के बारे में हम सूरत और माना का लफ्ज बोलते हैं तो वहां सूरत से मुराद है कपड़ा, कि सूरतन ये वही चीज है वही कपड़ा है, और माना से मुराद कीमत है भाई, कि चोर के पास अगर ये माल हलाक हो जाए तो चोर पर जमान नहीं आएगा। तो मालूम है सिर्फ सूरत के एतबार से मालिक का हक है, माना के एतबार से मालिक का हक नहीं। तो इसलिए हमने चोर को तरजीह दी कि चोर इस माल का मालिक बन गया क्योंकि उसका हक सूरतन भी है और मानन भी है, जबकि मालिक का हक सिर्फ सूरतन है मानन नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में गसब के अंदर गासिब और मालिक दोनों का हक सूरतन भी है और मानन भी है। किस तरह गासिब का हक सूरतन किस तरह है, वही जो पहले बयान हुआ कि कपड़े का रंग बदल चुका है, तो सूरत के एतबार से भी गासिब का हक आ गया कपड़े में, और माना के एतबार से भी गासिब का हक आ गया। किस तरह, कि कपड़े की कीमत बढ़ गई, अगर ये कपड़ा वो वापस करेगा तो जो कीमत बढ़ी है वो उस मालिक से वसूल करेगा। तो मालूम हुआ गासिब का हक इस मकसूबा कपड़े के अंदर सूरतन भी है और मानन भी है, जबकि इसी तरह मालिक का हक भी सूरतन और मानन दोनों एतबार से है। मालिक का हक सूरतन किस तरह है, कि वही कपड़ा है, कि ये वही कपड़ा है, जात तो वही है, सिर्फ वसफ यानी रंग बदला है। और नीज मालिक का हक माना के एतबार से भी है कि अगर गासिब के पास ये कपड़ा हलाक हो गया तो गासिब को जमान देना पड़ेगा, जबकि चोर को जमान नहीं देना पड़ता था। तो वहां सिर्फ मालिक का हक सूरतन था मानन नहीं, लेकिन यहां गसब के अंदर मालिक का हक सूरतन भी है कि वही कपड़ा है, और मानन भी है कि अगर गासिब के पास ये कपड़ा हलाक हुआ तो गासिब को जमान देना पड़ेगा। तो मालूम हुआ गसब के अंदर गासिब का हक भी सूरतन और मानन है और मालिक का हक भी सूरतन और मानन है। तो फिर हमने मालिक की जानिब को तरजीह दे दी कि अभी भी मालिक का हक इस चीज से खत्म नहीं हुआ, यही कपड़ा वापस करना पड़ेगा और जो कीमत बढ़ी है वो गासिब को दिला दी जाएगी जी। तो हमने मालिक की जानिब को तरजीह दे दी। क्यों मालिक की जानिब को तरजीह दी, वजह यह कि कपड़ा तो वही है, कपड़ा तो वही है, गासिब ने सिर्फ उसका वसफ बदला है। तो चीज जब वही है, मालिक का हक भी सूरतन और मानन, गासिब का हक भी सूरतन और मानन, लेकिन बहरहाल चीज तो वही है, असल कपड़ा है, रंग तो उसका वसफ है। तो हमने असल का एतबार करते हुए उसको मालिक ही का हक करार दे दिया। फर्क समझ में आया, तो लिहाजा आप चोर के मसले को गसब के मसले पर कियास नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया था कि अगर चोर ने उस कपड़े को स्याह रंग दे दिया यानी उस कपड़े को काला रंग दे दिया तो इस सूरत में दोनों मजहबों के मुताबिक यह कपड़ा अभी भी मालिक ही का है, यानी इमाम साहब के नजदीक भी यह कपड़ा मालिक ही का है और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक भी यह कपड़ा मालिक ही का है। अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चाहे सुर्ख रंग दिया जाए चाहे काला रंग दिया जाए, दोनों सूरतों में एक ही मसला है कि चोर इस कपड़े का मालिक बन चुका है। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक ये कपड़ा मालिक को वापस किया जाएगा। वजह इसकी यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक ये जो काला रंग है इससे कपड़े की कीमत बड़ी नहीं है बल्कि कम हो गई है, तो ये नुकसान है और नुकसान की सूरत में तो चोर चीज का मालिक नहीं बनता, लिहाजा ये चीज ये कपड़ा मालिक ही को वापस दिलाया जाएगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जैसे सुर्ख रंग से कपड़े के अंदर ज्यादती आ जाती थी, इसी तरह काले रंग की वजह से भी कपड़े के अंदर ज्यादती आ गई। तो इमाम अबू यूसुफ रमला फरमाते हैं जैसे सुर्ख रंग में ज्यादती आई थी, काले रंग के अंदर भी ज्यादती आ गई है, और जैसे सुर्ख रंग के अंदर चोर ही उस कपड़े का मालिक बन गया था, काले रंग के अंदर भी चोर ही उस कपड़े का मालिक बन गया है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमला भी अपने असल पर ही चले हैं, इमाम मोहम्मद रहमला के नजदीक कि कपड़े को सुर्ख रंग दे दें फिर भी मालिक का हक उससे खत्म नहीं होता, तो ये काला रंग दे दिया जाए तो यह भी कपड़े के अंदर ज्यादती है, इसकी वजह से भी मालिक का हक उस कपड़े से खत्म नहीं होगा। लिहाजा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह दोनों के नजदीक ये कपड़ा मालिक को वापस किया जाएगा, लेकिन दोनों की इल्लत अलग अलग है। इमाम साहब के नजदीक इसलिए वापस किया जाएगा क्योंकि काला रंग नुकसान है और नुकसान की वजह से जो है चोरी इस चीज का मालिक नहीं बन सकता, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक इल्लत अलग है। वो फरमाते हैं काले रंग से भी कपड़े में ज्यादती ही आई है, लेकिन ज्यादती की वजह से चोर उस चीज का मालिक नहीं बन सकता, यह चीज मालिक को वापस करना पड़ेगी। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। बाबू कतई तारीख जी, बाबू कतई तारीख, मैंने आपको बतलाया था कि कतई तारीख जो है वो डाके को कहते हैं भाई। एक सरीका सुगरा है जिसकी तफसील पीछे गुजर गई, और एक सरीका कुबरा है और वो डाके को कहते हैं। और साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि सरीका के अंदर खुफिया होना और पोशीदा होना जरूरी होता है, तो जिस तरह आम चोरी जो है माल के मालिक की निगाहों से छुप कर की जाती है, इसी तरह ये जो सरीका कुबरा है यानी कतई तारीख, ये भी इमाम और हाकिम जो है उसकी नजरों से छुप कर की जाती है, तो यहां भी छुपने और पोशीदा होने का माना मौजूद है, क्योंकि रास्तों की हिफाजत वो खलीफा और हाकिम की जिम्मेदारी है भाई। फिर उसके बाद याद रखें कि चोरी को सरीका सुगरा इसलिए कहते हैं कि उसका नुकसान कुछ महदूद लोगों को होता है, यानी जिनका माल चोरी हुआ है सिर्फ उन्हीं का नुकसान है, जबकि डाके को सरीका कुबरा इसलिए कहते हैं कि इसका नुकसान तमाम मुसलमानों को होता है भाई। जब रास्ते में डाका पड़ेगा तो लोग उस रास्ते का रुख ही नहीं करेंगे, तो सारे तिजारती मामलात वगैरह खराब हो जाएंगे और सारे लोगों को नुकसान होगा भाई। तो लिहाजा इसलिए इस डाके को सरीका कुबरा कहते हैं कि इसमें तमाम मुसलमानों का नुकसान होता है, और नीस इसलिए भी इसको सरीका कुबरा कहते हैं क्योंकि इसकी सजा बड़ी सख्त है। इसमें डाकू का हाथ भी काटा जाता है और उसका पांव भी काटा जाता है, जबकि आम चोरी के अंदर सिर्फ चोर का हाथ काटा जाता है। और फिर याद रखना, ये डाकुओं का हाथ और पांव काटा जाएगा, उन पर हद कायम की जाएगी, तो इसकी शराइत है भाई। उलमा वो शराइत बयान फरमाते हैं, देखिए ये मेरी किताब में हाशिए के अंदर ये शराइत जिक्र की गई हैं। हाशिया तो तवील है, हम सिर्फ उसके अंदर जो शराइत है वो देख लेते हैं। पहला हाशिया भाई, उसके अंदर जिक्र फरमाते हैं कि कतई तारीख के अंदर जो हद जारी की जाएगी उसकी पहली शर्त यह है कि वो जो डाकू हैं वो ताकतवर हों, यानी डाका डालने की कुव्वत हो इनके अंदर, कि आम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो लिहाजा पहली शर्त यह है कि डाकुओं को ताकत और कुव्वत हासिल हो गई, और दूसरी शर्त यह है कि ये जो डाका है ये शहर से बाहर हो गई। मैंने आपको बतलाया था कि उर्दू के अंदर शहर के अंदर जो माल छीना जाए असलहे के जोर पर उसको भी डाका कहते हैं, और जंगल के अंदर असलहे के जोर पर जो माल छीना जाए उसे भी डाका कहते हैं, लेकिन अरबी जुबान के अंदर शहर के अंदर असलहे के जोर पर माल छीना जाए तो इसको इंतहाब कहते हैं, और यह शख्स मुंतहिब कहलाता है, लुटेरा भाई, कि इसने माल लूटा है। और जंगल के अंदर जो शख्स माल लूटता है असलहे के जोर पर, इसको कतई तारीख कहते हैं, इसको डाका कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो पहली शर्त क्या कि वो जो डाकू हैं उनको कुव्वत और ताकत हासिल हो, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता वहां पर, और दूसरी शर्त ये है कि वो डाका जो है वो शहर से बाहर होना चाहिए भाई, और तीसरी शर्त ये है कि वो डाका दारुल इस्लाम में होना चाहिए, फिर ही हद जारी की जा सकती है, और चौथी शर्त ये है कि वो जो माल इन्होंने उठाया है वो हर एक को निसाब के बकदर पहुंचे, यानी जितने डाकू हैं वो जो माल इन्होंने उठाया है उस माल को उन डाकुओं पर तकसीम करें तो हर डाकू के हिस्से में कम अज कम 10 दिरहम जरूर आए तो फिर ही इन पर हद जारी की जाएगी भाई। और पांचवीं शर्त यह है कि उन डाकुओं के अंदर कोई बच्चा या मजनून या जिन पर डाका डाला गया है उनमें से किसी आदमी का करीबी महरम रिश्तेदार ना हो। डाकुओं के अंदर कोई बच्चा या मजनून या जिन पर डाका डाला गया है उन लोगों में से किसी का कोई करीबी महरम रिश्तेदार इन डाकुओं में ना हो भाई, वरना बच्चा या मजनून उन पर तो हद जारी नहीं की जा सकती। और नीज वो करीबी महरम रिश्तेदार ने भी जब अपने करीबी महरम रिश्तेदार का माल लूटा है तो फिर वहां पर भी हद जारी नहीं की जा सकती। तो जब बाज अफराद पर हद जारी नहीं की जा सकती तो बाकियों से भी हद साकित हो जाएगी भाई। तो यह थी पांचवीं शर्त भाई। और छठी शर्त यह है कि ये डाकू तौबा से पहले पकड़े जाएं। अगर इन्होंने डाका भी डाला है लेकिन बाद में इन्होंने तौबा कर ली, जब इनको पकड़ा गया तो ये तौबा कर चुके थे, इन पर नेक लोगों के आसार नजर आ रहे थे कि मालूम हुआ वाकई ये सीधे रास्ते पर आ चुके हैं, तो फिर इस सूरत के अंदर इन पर हद जारी नहीं की जाएगी क्योंकि नस के अंदर यह जिक्र आया है। आगे साहिब हिदाया भी जिक्र फरमाएंगे, नस के अंदर इस्तिस्ना है अगर ये तौबा कर लें तो। मालूम हुआ कतए तरीक के अंदर यानी डाका डाला जाए अगर जंगल के अंदर तो उसमें डाकू का हाथ भी काटा जाएगा और पांव भी काटा जाएगा, लेकिन उसकी छह शर्तें हैं भाई। दोबारा दोहरा लें, पहली शर्त क्या है कि वो डाकुओं को ताकत और कुवत हासिल हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो शहर से दूर हो, और तीसरी शर्त यह है कि वो दारुल इस्लाम में हो, और चौथी शर्त यह है कि हर एक हिस्से में निसाब के बकदर माल आए, और पांचवीं शर्त यह है कि उन डाकुओं के अंदर कोई बच्चा मजनून या कोई करीबी महरम रिश्तेदार ना हो उन लोगों का जिन पर डाका डाला जा रहा है, और छठी शर्त यह है कि ये डाकू तौबा करने से पहले पकड़े जाएं, फिर इन पर हद जारी की जाएगी। बात समझ में आ गई। तो तौबा की सूरत में डाकुओं से हद साकित हो जाती है, इसका जिक्र बाकायदा नस के अंदर आता है, लेकिन बाकी हुदूद के अंदर बाकी हुदूद तौबा से भी साकित नहीं होंगी भाई। उनके अंदर चाहे तौबा भी कर ले फिर भी अगर वो मुजरिम पकड़ा जाए तो उस पर हद जारी की जाएगी। तो कहते हैं बाब कतई तरीक, ये बाब है कतई तरीक यानी डाके के बयान में। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं व ईदा खराजा जमा तुम मुमतनीना, तर्जमा गौर से सुनिएगा भाई। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं व ईदा खराजा जमातुन, और जब एक जमात निकली मुमतनीना इस हाल में कि वो बचने वाले हैं, ये लफ्जी तर्जमा कर रहा हूं। इम्तना का माना है रुकना, बाज आना, किसी चीज से बचना, लेकिन मुराद ये है कि इनका कोई मुकाबला करे तो ये उससे बच सकते हैं, यानी इनमें इतनी कुव्वत है कि मुकाबला कर सकते हैं। तो कहते हैं वह इदा खराजा जमातुम मुमतनीना, और जब एक जमात निकली इस हाल में कि वो बचने वाले हैं, ये तो लफ्जी तर्जमा था। अब बामुहावरा तर्जमा कर लें, बामुहावरा क्या तर्जमा करेंगे कि वो मुकाबला कर सकते हैं। कहते हैं वह ईदा खराजा जमातुम मुमतनीना, और जब एक जमात निकली इस हाल में कि वो मुकाबला कर सकते हैं। अव वाहिदुन यकदिरु अलल इम्तिनाई, या एक आदमी निकला जो कादिर है इम्तिना पर यानी मुकाबला करने पर, कोई इसके सामने आए तो ये उसका मुकाबला कर सकता है। तो कहते हैं अव वाहिदुन यकदिरु अलल इम्तिनाई, या एक ऐसा आदमी निकला जो मुकाबला करने पर कादिर है, या यूं कहो वो अपना बचाव करने पर कादिर है, उसको कुव्वत हासिल है। फकसदु कतअत तरीकी, तो इन्होंने कतअ तरीक का इरादा किया, डाका डालने का इरादा किया। फउखिज़ु क़ब्ल अन यख़ुज़ु मालन व यक़्तुलु नफ़्सा, भाई याद रखो यहां आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि जो डाकू हैं इन पर हद जारी की जाएगी, और यहां कुल चार सूरतें बनती हैं भाई। एक सूरत यह है कि डाकू आए, उन्होंने काफिले को घेरे में ले लिया, लेकिन अभी उन्होंने माल भी नहीं लूटा था और किसी को कत्ल भी नहीं किया था, उससे पहले ही मदद आ पहुंची और इनको पकड़ लिया गया। दूसरी सूरत यह है कि इन्होंने माल ले लिया था और फिर बाद में पकड़े गए, कत्ल तो नहीं किया लेकिन माल ले लिया था। तीसरी सूरत यह है कि इन्होंने माल नहीं लिया सिर्फ कत्ल किया था, कत्ल किया था और उसके बाद ये पकड़े गए। और चौथी सूरत यह है कि इन्होंने माल भी लिया है और कत्ल भी किया है और उसके बाद अब पकड़े गए हैं। तो इन सूरतों के अंदर इनकी सजा भी मुख्तलिफ होगी जो साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। तो कहते हैं फकसदू कतअ तरीकी, तो इन्होंने कतअ तरीका यानी डाका डालने का इरादा किया। फउखिज़ू क़ब्ला अन यअख़ुज़ू मालन, तो इनको पकड़ लिया गया कबल इसके कि वो माल ले लेते। वयक़तुलू नफ़सन, और कबल इसके कि वो किसी जान को कत्ल कर देते। माल लेने से या किसी को कत्ल करने से पहले ही वो पकड़े गए। तो इस सूरत में हबसा हुमुल इमामु, इमाम जो है इनको कैद में डाल देगा। हत्ता युहदिसु तौबतन, यहां तक कि ये तौबा कर लें, यहां तक कि ये तौबा कर लें और इन पर तौबा के असरात नजर आने लगे, नेकी के असरात उन पर नजर आने लगे, वाकई मालूम हो कि ये लोग बदल गए हैं। तो कहते हैं हत्ता युहदिसु तौबतन, यहां तक कि वो तौबा कर लें। वह इन अखदू माल मुस्लिमिन औ ज़िम्मीयिन, और अगर इन्होंने किसी मुसलमान या जिम्मी का माल ले लिया। भाई मुसलमान या जिम्मी के माल को जिक्र कर रहे हैं, वजह यह कि जिस तरह दारुल इस्लाम में मुसलमान की जान और मुसलमान का माल हमेशा के लिए महफूज है, इसी तरह जिम्मी जो है, जिम्मी का माल और जान भी दारुल इस्लाम में महफूज है, क्योंकि हमने उनसे अहदे जिम्मा किया हुआ है, हम उनसे सालाना जिजिया लेते हैं और उनकी जान और माल की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। तो मालूम है मुसलमान और जिम्मी का माल दारुल इस्लाम के अंदर हमेशा के लिए महफूज है, जबकि इसके मुकाबले में एक मुस्तामिन है। मुस्तामिन मसलन वो हरबी जो दारुल हर्ब में रहता है लेकिन अमान लेकर हमारे मुल्क में आ गया है। अब ये जो मुस्तामिन है इसका माल हमेशा के लिए महफूज नहीं है, बल्कि जितनी देर के लिए अमान लेकर ये आया है उतनी देर तक इसका माल महफूज है। तो मालूम हुआ मुसलमान और जिम्मी की माल की हुरमत मुअब्बद है और मुस्तामिन के माल की हुरमत मुअब्बद नहीं है। लिहाजा अगर कोई मुस्तामिन का माल लूटता है, उसके ऊपर डाका डालता है, तो याद रखो उस पर फिर डाके की हद जारी नहीं की जाएगी। अगर अकेले मुस्तामिन पर कोई डाका डालता है तो उस पर हद जारी नहीं की जाएगी, उसको सजा वगैरह तो दी जाएगी लेकिन बहरहाल हद जारी नहीं की जाएगी। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं हद जो है शुबे की वजह से साकित हो जाती है, और ये जो मुस्तामिन है इसका माल तो हमेशा के लिए महफूज नहीं है, तो इस माल के महफूज होने में शुबा आ गया और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर मुसलमान और जिम्मी को जिक्र किया साहिबे हिदाया ने। कहते हैं वह इन माल मुस्लिमीन औ ज़िम्मीयिन, और अगर उन डाकुओं ने किसी मुसलमान या जिम्मी का माल ले लिया। वल माखूज इज़ा कुस्सिमा अला जमाअतिहिम, और वो माल जिसको लिया गया है अगर उस माल को उन डाकुओं की जमात पर तकसीम किया जाए। असाबा कुल्ला वाहिदिम मिनहुम आशरतु दराहिमा फसाइदन, तो पहुंचता है कुल लवाहिदिम मिनहुम उनमें से हर एक को आशरतु दराहिमा दस दिरहम फसाइदा या ज्यादा, उनमें से हर एक को दस दिरहम या ज्यादा पहुंचते हैं। भाई मेरी किताब में आशारा था दराहिम, आशारा पर नसब है, ये दुरुस्त नहीं है भाई, ये आशारा फाइल है असाबा का। क्या चीज पहुंची है? दस दिरहम पहुंचे हैं, और किसको पहुंचे हैं? हर एक को भाई। तो कुल लवाहिदिन ये है मफ़ऊल भाई। तो कहते हैं वल माखूज इज़ा कुस्सिमा अला जमाअतिहिम, और वो माल जिसको लिया गया है जब उसको तकसीम कर दिया जाए उन डाकुओं की जमात पर, तो असाबा कुल्ल वाहिदिम मिनहुम अशरतु दराहिम फसाइदन, तो उनमें से हर एक के हिस्से में दस दिरहम या ज्यादा आते हैं। औ मा तबलुगु कीमतुहु ज़ालिका, या जिसकी कीमत इस तक पहुंचती है। मसलन जो माल लूटा है वो दिरहम या दीनार नहीं है बल्कि और माल है, लेकिन उस माल की कीमत लगाई जाए तो हर डाकू के हिस्से में दस दिरहम या इससे ज्यादा आते हैं। यह माना है औमा तब लोगो कीमत हो जालिका, या ऐसा माल है कि उसकी कीमत इस दस दिरहम तक पहुंचती है। तो कताअल इमामु अयदियहुम व अर्जुलहुम मिन खिलाफ, अब देखो भाई इन्होंने माल लूटा है, डाका डाला है, तो अब इन पर हद जारी करेगा इमाम। तो कहते हैं कताल इमामु अयदियहुम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन, तो इमाम इनके हाथ और पांव कटवा देगा मिन खिलाफिन मुखालिफ जानिब से, यानी दायां हाथ काटा जाएगा तो बायां पांव काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि अगर एक ही तरफ के हाथ और पांव काट दिए जाएंगे तो फिर चलने का जिनसे नफा ही खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कताल इमाम अयदियहुम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन, तो इमाम जो है इनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से कटवा देगा। वह इन कतलू, अब तीसरी सूरत आ गई, वह इन कतलू वलम यखुजू माला, और अगर इन डाकुओं ने कत्ल तो किया है लेकिन माल नहीं लिया, तो कतलहुमुल इमामु हद्दन, तो इनको इमाम कत्ल कर देगा हद्दन बैतबार हद के, इनको इमाम हद के एतबार से कत्ल कर देगा। यानी आगे साहिब हिदाया भी आपको बतलाएंगे कि ये जो इनको कत्ल किया जाएगा ये बतौर हद के है, लिहाजा अगर मकतूल के अवलिया माफ करना भी चाहें तो उसका कोई एतबार नहीं है, ये कोई किसास के तौर पर नहीं कत्ल किया जा रहा बल्कि बतौर हद के कत्ल किया जा रहा है, लिहाजा यहां किसी को माफ करने की इजाजत नहीं भाई। तो तीन सूरतें जिक्र हो गई, एक सूरत क्या कि अगर ये माल लूटने से या कत्ल करने से पहले ही पकड़े गए तो फिर इमाम इनको जेल में डाल देगा। दूसरी सूरत ये है कि इन्होंने सिर्फ माल लूटा है तो फिर इमाम इनका हाथ और पांव कटवा देगा। और तीसरी सूरत ये है कि इन्होंने सिर्फ कत्ल किया है माल नहीं लूटा, तो इस सूरत में इमाम इनको कत्ल करवा देगा। और चौथी सूरत आगे साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे कि इन्होंने माल भी लूटा है और कत्ल भी किया है भाई। आगे देखिए कहते हैं वल असलू फीही कौलुहू ताला, और इस हद के अंदर असल जो है वो अल्लाह ताला का ये कौल है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नमा जज़ाउल्लदीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा जज़ाउल्लदीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, और वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं व यसाउन फिल अर्ज़ फसादा, और वो जमीन के अंदर फसाद फैलाते हैं जी। उनकी जजा यही है इन्नमा जज़ाउल्लदीना, इन लोगों की जजा यही है। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नमा जज़ाउल्लदीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअउन फिल अर्ज़ फसादा, कि इन लोगों की जजा यही है जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद मचाते हैं। क्या जजा है वो अब आगे आ रही है कि अन युक़त्तलू, ये कि इनको कत्ल किया जाए, औ युसल्लबू, या इनको सूली दी जाए, औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन, या ये कि इनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से कटवा दिए जाएं, औ युनफौ मिनल अर्ज़ी, या इनको जमीन से दूर कर दिया जाए यानी जेल में डाल दिया जाए। और फुकहा फरमाते हैं कि औ युनफौ मिनल अर्ज़ का माना है कि इनको जलावतन कर दिया जाए, इन डाकुओं को जलावतन कर दिया जाए, जिस इलाके में रहते हैं वहां से इनको निकाल दिया जाए। हम कहते हैं नहीं, अगर इस इलाके से निकाल भी दें इनको तो ये दूसरी जगह जाकर फसाद फैलाएंगे। तो लिहाजा यहां जमीन से नफी करने से मुराद ये है कि इनको जेल में डाल दिया जाए ताकि तमाम जमीन वाले इनके शर से महफूज हो जाए। तो जब जेल में डाल दिया तो जमीन से दूर हो गए, अब जमीन वाले इनके फसाद से महफूज हो गए। बात समझ में आ गई, तो वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं उनके लिए चार सजाएं जिक्र हुई भाई। फिर देखो पहली सजा क्या, अन युक़त्तलू, कि इनको कत्ल किया जाए, औ युसल्लबू, दूसरी सजा यह कि उनको सूली दी जाए, औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन, तीसरी सजा यह कि इनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से कटवा दिए जाए, औ युनफौ मिनल अर्ज़ी, और चौथी सजा यह कि इनको जमीन से दूर कर दिया जाए यानी इनको कैद में डाल दिया जाए। भाई भाई सबसे पहले ये सूली को समझ लें कि इनको सूली दे दी जाए। सूली का तरीका यह है, उलमा फरमाते हैं कि जमीन में एक सीधी लकड़ी गाड़ दी जाए और फिर उस लकड़ी के ऊपर एक लकड़ी बांध दी जाए और उस पर उस डाकू के हाथ बांध दिए जाएं, और उससे जरा नीचे एक और लकड़ी बांध दी जाए और उस पर डाकू के पांव बांध दिए जाएं। तवज्जो है, एक सीधी लकड़ी है और उसके ऊपर दो लकड़ियां लगा दी गई, एक लकड़ी के साथ डाकू के हाथ बांध दिए गए और दूसरी लकड़ी के साथ डाकू के पांव बांध दिए गए, और फिर उसके बाद बास फरमाते हैं कि कत्ल करने के बाद इनको इस तरह सूली दे दी जाए। पहले कत्ल कर दिया जाए और फिर इनको इस तरह सूली दे दी जाए और इस तरह इनको कई दिन तक लटका रहने दिया जाए ताकि तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए भाई। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि नहीं, इनको कत्ल करने के बाद सूली नहीं देंगे बल्कि इनको जिंदा सूली देंगे और फिर इनके पेट और सीने पर नेजे मार मार कर इनको कत्ल कर दिया जाएगा और फिर इसी तरह इनको कई दिन तक लटका रहने दिया जाएगा ताकि लोगों के लिए खूब इबरत का बाइस बन जाए। बात समझ में आ गई? तो ये है सूली। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ने चार सजाएं जिक्र फरमा दी, या तो इनको कत्ल किया जाए या सूली दी जाए या इन मुखालिफ जानिब से इनके हाथ और पांव कटवा दिए जाएं या इनको जमीन से दूर कर दिया जाए। तो बाज़े अइमा जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह हैं वो फरमाते हैं कि यहां जो आओ आया है आओ इख्तियार के लिए होता है, तो इमाम को इख्तियार है इन चारों सजाओं में से जो सजा भी देना चाहे वो दे सकता है, जो सजा भी वो देना चाहे दे सकता है। डाकू पकड़े गए हैं, चाहे वो डाके से पहले पकड़े गए हैं, चाहे सिर्फ माल लूटा है, चाहे सिर्फ कत्ल किया है, और चाहे कत्ल भी किया है और माल भी लूटा है, तो इमाम को इख्तियार है जिस किस्म की सजा भी वो देना चाहे वो दे सकता है, क्योंकि कुरान के अंदर चारों सजाओं के दरमियान औ का लफ्ज आ रहा है कि ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो, चारों के दरमियान इस तरह जिक्र है। हम कहते हैं नहीं, यहां ये जो औ आया है ये इख्तियार के लिए नहीं है बल्कि ये तकसीम के लिए है। तकसीम के लिए है कि जिस किस्म का जुर्म हो उसके मुताबिक सजा दो, अगर जुर्म कम दर्जे का है तो सजा भी हल्की दो। मसलन सिर्फ लोगों को डराया है और कत्ल से और माल लूटने से पहले ही पकड़े गए हैं तो अब सिर्फ इनको जेल में डाल दो, और अगर इन्होंने कत्ल किया है तो इनको भी कत्ल कर दो, और अगर इन्होंने सिर्फ माल लूटा है तो सिर्फ इनके हाथ और पांव कटवा दो, और अगर इन्होंने माल भी लूटा है और कत्ल भी किया है तो फिर इस सूरत के अंदर इमाम को इख्तियार है। वो आगे साहिबे हिदायत जिक्र फरमाएंगे कि वो इनके हाथ पांव भी कटवा दे और फिर कत्ल करवा दे, या हाथ और पांव कटवा दे और सूली दे दे, या सिर्फ कत्ल करवा दे जी। या सिर्फ सूली दे दे, चार इख्तियार हैं इमाम को। वो डाकू जो माल भी लूटें और कत्ल भी करें उनके अंदर आगे साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे, वहां इमाम को चार इख्तियार हैं, सिर्फ इनको कत्ल करवा दे जी। सिर्फ इनको कत्ल करवा दे, या सिर्फ इनको सूली दे दे जी। या इस कत्ल और सूली के साथ हाथ पांव काटने को भी मिला दे, हाथ और पांव भी काटे और कत्ल भी कर दे, या हाथ और पांव भी काटे और सूली भी दे दे, तो चारों का इख्तियार होगा। बात समझ में आ गई? तो हम कहते हैं कि यहां ये जो आओ आया है ये तकसीम के लिए आया है, यहां तकसीम के लिए आया है कि अगर जुर्म हल्का हो तो सजा भी हल्की दी जाएगी और जुर्म अगर सख्त हो तो सजा भी सख्त दी जाएगी। तो कहते हैं वल असलु फीही कौलुहु तआला, और असल जो है इसके अंदर अल्लाह ताला का कौल है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु अल आयह, ऐ इक़्रअल आयत, के बाकी आयत आप पढ़ लीजिए भाई। वल मुरादु मिनहु वल्लाहु अलमु तौज़ीउ अलल अहवाल भाई, और फुकहा तो फरमाते हैं यहां औ जो है वो इख्तियार देने के लिए आया है, लेकिन हमारे नजदीक ये औ किस लिए है? तकसीम के लिए है। तवज्जो है, लेकिन हमारी बात कोई कतई तो नहीं है, हमारी बात कतई तो नहीं है। हां, हमारे फुकहा को ये समझ में आया कि ये औ यहां पर इख्तियार के लिए नहीं है बल्कि तकसीम के लिए है। चुनांचे इसीलिए साहिबे हिदायत बतलाएंगे कि यहां पर इससे मुराद तकसीम है, और वल्लाहु आलम, और अब बाकी अल्लाह ही खूब जानते हैं। हमें तो यह बात समझ में आई है, बात समझ में आ गई। तो यह माना है वल मुराद मिनहु, और इससे मुराद जो है वल्लाहु आलमु, और अल्लाह ही खूब जानते हैं, अल्लाह ही खूब जानते हैं। इससे मुराद जो है अतौज़ीउ अलल अहवाली, वो तकसीम है अहवाल पर कि जिस किस्म का हाल हो उसके मुताबिक सजा होगी। वही अरबातुन, और ये अहवाल तो चार हैं। हादिही सलासतुल मस्कूरतु, ये मस्कूरा तीन, ये तीन जो ऊपर मतन में जिक्र हो गए। एक सूरत क्या थी कि सिर्फ डराया है, न माल लूटा है और न कत्ल किया है। दूसरी सूरत जो है कि सिर्फ माल लूटा है। तीसरी सूरत जो है सिर्फ कत्ल किया है। ये तीन सूरतें बयान हो गई और चौथी सूरत जिसमें माल भी लूटा है और कत्ल भी किया है वो आगे बयान करेंगे। तो कहते हैं ये चार अहवाल हैं, हादिह सलासतुल मज़कूरतु, ये तीन जो जिक्र हो गए, वर्राबियातु नज़कुरुहा इंशा अल्लाह ताला, और चौथी हालत वो है जिसको हम इंशा अल्लाह ताला जिक्र करेंगे, वली अन्नल जिनायाति ततफावतु अलल अहवाली, और इसलिए क्योंकि जुर्म जो है वो मुख्तलिफ होते हैं अहवाल पर, एक जुर्म और तरह है दूसरा जुर्म और तरह है तो उनके अहवाल मुख्तलिफ हैं। तो कहते हैं वली अन्नल जिनायाति, और इसलिए क्योंकि ये जुर्म जो है ततफावतु अलल अहवाली, वो इन अहवाल पर मुख्तलिफ हैं, फल्लाइक तगल्लुजुल हुक्म बितगल्लुजिहा, तो लायक यह है, मुनासिब यह है तगल्लुजुल हुक्म के हुक्म सख्त होना चाहिए, बितगल्लुजिहा जुर्म के सख्त होने की वजह से, जुर्म सख्त हो तो हुक्म भी सख्त होना चाहिए। तो कहते हैं फल लायक, तो मुनासिब यह है तगल्लुजुल हुक्म भी तगल्लुजिहा के हुक्म सख्त होना चाहिए जिनायत के सख्त होने की वजह से, अम्मल हब्सु फिल उला, तो कैद करना जो है पहली सूरत में, पहली सूरत में हमने क्या कहा कि सिर्फ डराया है तो कैद कर देंगे, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं अम्मल हब्सु फिल उला, तो पहली सूरत के अंदर जो कैद करना है, फली अन्नहुल मुरादु बिन नफिल मजकूरी, तो वही कैद ही मुराद है इस मजकूरा नफी से, कुरान के अंदर जो अल्लाह ने फरमाया औ युनफौ मिनल अर्जी, इससे ये ही कैद करना ही मुराद है। कहते हैं फली अन्नहुल मुरादु बिन नफील मजकूरी, इसलिए क्योंकि कैद करना ही मुराद है इस मजकूरा नफी से, लि अन्नहु नफ्युन अन वजहिल अर्जी, इसलिए क्योंकि ये जमीन के ऊपर से नफी करना है, वजहुल अर्ज यानी जमीन का जो जाहिर है, जमीन का जो ऊपर है, लि अन्नहु नफ्युन अन वजहिल अर्जी, इसलिए क्योंकि ये कैद करना, ये जमीन के ऊपर से इनको दूर करना है, बिदफ़ शर्रिहिम अन अहलिहा, इनके शर को दूर करते हुए, अन अहलिहा इस जमीन वालों से, ये जब हम इनको कैद में डालेंगे तो जमीन वालों से इनका शर दूर हो जाएगा। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिअन्नहु नफ्युन अन वजहिल अर्जी, इसलिए क्योंकि कैद करना ये जमीन के ऊपर से इनको दूर करना है, बिदफ़ शर्रिहिम अन अहलिहा, जमीन वालों से इनके शर को दूर करते हुए, वयुअज़्ज़रून ऐज़ा, और इनको ताज़ीर भी की जाएगी यानी इनको कोड़े भी लगाए जाएंगे, लिमुबाशरतिहिम मुनकरल इखाफती, मुबाशरत का माना है सरंजाम देना, मुनकर का माना है नापसंदीदा, इखाफत का माना है किसी को डराना खौफजदा करना, तो इनको ताजीर भी की जाएगी, लिमुबाशरतिहिम मुनकरल इखाफती, इस वजह से कि इन्होंने डराने धमकाने का नापसंदीदा काम सरंजाम दिया है, इन्होंने डराने धमकाने का नापसंदीदा काम सरंजाम दिया है, तो इनको कोड़े भी लगाए जाएंगे और कैद में भी डाल देंगे। आगे देखिए, वशरतल कुदरता अलल इम्तिनाई, और साहिब कुदूरी ने इम्तिना पर कादिर होने की शर्त लगाई कि ये लोग मुकाबले की कुदरत रखते हो, ताकत रखते हो, तो कहते हैं वशरतल कुदरता अलल इम्तिनाई, और साहिब कुदूरी ने मुकाबला करने की कुदरत की शर्त लगाई, लिअन्नल मुहारबता ला यतहक्कु इल्ला बिल मनाअति, इसलिए क्योंकि जंग नहीं पाई जा सकती, इल्ला बिल मनाअति मगर ताकत और कुव्वत के जरिए। भाई मुहारबा कुरान में आया है ना, वल्लदीना युहारिबून अल्लाह, तो मुहारबा के लिए तो कुव्वत जरूरी है, बगैर कुव्वत के तो जंग और लड़ाई नहीं हो सकती। और याद रखो यहां आया इल्ला बिल मनाअती, मनाअ कहते हैं ताकत और कुव्वत को, कहते हैं लिअन्नल मुहारबता ला यतहक्कु इल्ला बिल मनाअती, इसलिए क्योंकि जंग जो है वो ताकत और कुव्वत के बगैर नहीं हो सकती, वल हालतु सानियतु कमा बय्यन्नाहा लिमा तलौनाह, वल हालतु सानियतु, और दूसरी हालत, दूसरी हालत हमने क्या बयान की थी मतन में कि इन्होंने सिर्फ माल लिया है, तो कहते हैं वल हालतु सानियतु, और दूसरी हालत कमा बय्यन्नाहा, जैसे हमने इसको बयान कर दिया कि सिर्फ माल लिया है तो हाथ और पांव काटेंगे, तो कहते हैं जैसे हमने उसको बयान किया कि इसमें हाथ और पांव काटेंगे, लिमा तलौनाहु, उस आयत की वजह से जो हमने तिलावत की, तो कहते हैं वल हालत सानियतु कमा बैयना हालिमा तलव नाहू, और दूसरी हालत जैसे कि हमने बयान कर दिया वो उस आयत की वजह से है जो हमने तिलावत की। व शाराता अन यकून अल माखूज माल मुस्लिमीन औ जिम्मीयिन, और साहिब कुदूरी ने शर्त लगाई कि वो माल जो लिया गया है वो किसी मुसलमान या जिम्मी का माल होना चाहिए। लियकून अल इस्मतु मुअब्बदतन, ताकि उस माल की इस्मत मुअब्बद हो, हमेशा के लिए हो, वो माल हमेशा के लिए मुहतरम और महफूज हो। वलिहादा लव कता तरीक अलल मुस्तामिनी, और इसीलिए अगर किसी ने डाका डाला अलल मुस्तामिनी मुस्तामिन पर, ला यजिबुल कतु, तो इस सूरत में फिर कता वाजिब नहीं होगी, यानी हद वाजिब नहीं होगी, क्योंकि उसका माल हमेशा के लिए महफूज नहीं है। वशारता कमाल निसाबी, और साहिब कुदूरी ने निसाब के कामिल होने की शर्त लगाई। फी हक कुल्ली वाहिदीन, उन डाकुओं में से हर एक के हक में, कि उनमें से हर एक के हक में पूरा निसाब आना चाहिए। कैला युस्तबाह तारफूहू, ताकि कहीं इसके उज़्र को मुबाह न समझा जाए। इल्ला बितनावुली ही मा लहू खतर, मगर उस माल के लेने की वजह से जिसकी अहमियत हो। भाई आप पढ़ चुके हैं चोरी के अंदर भी चोर का हाथ तब काटेंगे जब उसने ऐसा माल चुराया हो जिसकी अहमियत हो, और वो 10 दिरहम है हमारे नजदीक। 10 दिरहम जो है ये अच्छा खासा माल है भाई। तो यहां डाके के अंदर भी जरूरी है कि हर एक के हिस्से में 10 दिरहम आए, इसलिए क्योंकि हमने इनके हाथ और पांव काटने हैं। तो मामूली माल के अंदर इनके हाथ और पांव की इस्मत को साकित करार नहीं दिया जा सकता। तो कहते हैं कई ला युस्तबाह तारफूहू, ताकि मुबाह ना समझा जाए इस डाकू के उज्व को। इल्ला बितनावुली ही मा लहू खतर, मगर उस माल के ले लेने से जिसकी अहमियत है। वल मुराद कतउल यद अल्युम्ना वर्रिजल अल्युस्रा, और मुराद जो है ये जो मतन में आया था कि इनके आजा मुखालिफ जानिब से काटे जाएंगे, इससे मुराद क्या है? कहते हैं वल मुराद कतउल यद अल्युम्ना वर्रिजल अल्युस्रा, और इससे मुराद जो है दाएं हाथ और बाएं पांव का काटना है। कैला युअद्दी इला तफवीत जिन्सिल मनफाती, ताकि कहीं ये जिनसे नफा के फौत करने तक न पहुंचा दे। यानी हाथ और पांव मुखालिफ जानिब के काटेंगे, एक ही जानिब के नहीं काटेंगे, वरना तो जिनसे नफा ही खत्म हो जाएगा चलने का। यह माना है कि काटने से मुराद दाएं हाथ और बाएं पांव का काटना है। कई ला युअद्दी इला तफवीत जिन्सिल मनफाती, ताकि कहीं ये उस डाकू के जिनसे नफा के फौत करने तक न पहुंचा दे। वल हालतु सालिसतु कमा बैयना हालिमा तलव नाहू, वल हालतु सालिसतु, और तीसरी हालत, भाई तीसरी हालत क्या थी कि उन्होंने सिर्फ कत्ल किया है, और उस सूरत में इमाम भी इनको कत्ल करवाएगा बतौर हद के। तो कहते हैं वल हालतु सालिसतु कमा बैयनाहा, और तीसरी हालत जैसे कि हमने बयान कर दिया कि उसमें कत्ल किया जाएगा। लिमा तलव नाहू, उस आयत की वजह से जो हमने तिलावत की। वयुक्तलून हद्दा, और इनको जो कत्ल किया जाएगा ये बतौर हद के है। हत्ता लौ अफल औलिया उ अनहुम, यहां तक कि उस मकतूल के औलिया ने अगर मुआफ कर दिया। ला युल्तफतु इला अफ्विहिम, तो उनकी मुआफी की तरफ तवज्जो नहीं की जाएगी। लिअन्नहु हक्कु शरई, इसलिए क्योंकि ये कत्ल जो है ये शरीयत का हक है, ये बतौर हद के कत्ल किया जा रहा है। वर्राबियातु, और चौथी हालत जो है मैंने बतलाया था, चौथी हालत क्या है कि माल भी ले लें और कत्ल भी करें। तो कहते हैं वर्राबियातु, और चौथी हालत जो है ईदा कतलु व अखदुल माला, जब वो कत्ल भी करें और माल भी ले लें। फल इमाम बिल खियारी, तो इमाम को इख्तियार है। इनशा अकता ऐ दिया हम व अर्जुलहुम मिन खिलाफ हूं व कतलहुम औ सल्लबहुम व इनशा अकतलहुम व इनशा असलबहुम। जी सलाबा यसलुबू का माना भी सूली देना, और सल्लाबा युसल्लिबू तस्लीब का माना भी सूली देना। तो आप इसको सलाबाहुम भी पढ़ सकते हैं और सल्लाबाहुम भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बतलाया कि अगर इन्होंने माल भी लूटा है और कत्ल भी किया है तो इमाम को इख्तियार है 4 चीजों का। वो चाहे तो सिर्फ इनको कत्ल करवा दे, वो चाहे तो सिर्फ सूली दे दे, और वो चाहे तो इस कत्ल या सूली के साथ हाथ पांव के कटवाने को भी जमा कर दे कि हाथ पांव भी काटे और कत्ल भी कर दे, या हाथ पांव भी काटे और सूली भी दे दे, वही बयान कर रहे हैं। तो कहते हैं अगर इन्होंने माल भी लिया है और कत्ल भी किया है तो फल इमाम बिल खियारी, तो इमाम को इख्तियार है, इन शाह कता अयदियहुम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन, अगर चाहे तो इनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से कटवा दे, व कतलहुम और उसके साथ इनको कत्ल भी कर दे, औ सल्लबहुम या उसके साथ इनको सूली भी दे दे, हाथ और पांव भी काटे और सूली भी दे दे, व इन शाह कतलहुम और अगर चाहे तो सिर्फ इनको कत्ल करवा दे, हाथ पांव न कटवाए, व इन शाह सल्लबहुम और अगर चाहे तो इनको सिर्फ सूली दे दे, हाथ और पांव न कटवाए। व काल मोहम्मद रहमहुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं युक्तलु औ युस्लबु वला युक्ताउ, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कत्ल के साथ हाथ पांव नहीं काटे जा सकते या इसी तरह सूली के साथ हाथ पांव नहीं काटे जा सकते। तो कहते हैं वकाल मोहम्मद रहमहुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं युक्तलु औ युस्लबु वला युक्ताउ, कि कत्ल किया जाएगा या सूली दी जाएगी और हाथ और पांव नहीं काटे जाएंगे, लिअन्नहु जिनायतु वाहिदतुन, इसलिए क्योंकि यह डाका जो है एक ही जुर्म है, फला तू जिबु हद्दैनी, लिहाजा ये दो हदें वाजिब नहीं कर सकता, डाका एक फेल है तो लिहाजा एक ही हद आएगी, आप हाथ और पांव भी काट दें तो ये तो एक हद ये हो गई और फिर कत्ल कर दें या सूली दे दें, ये तो दो हदें आपने उसमें जमा कर दी। तो कहते हैं लिअन्नहु जिनायतुन वाहिदतुन, इसलिए क्योंकि डाका एक ही जुर्म है, फला तूजिबु हद्दैनी, तो ये दो हदों को साबित नहीं करता, वली अन्नमा दून नफ्सी और इसलिए क्योंकि नफ्स से जो कम होता है यदखुलु फिन नफ्सी, वो नफ्स के अंदर दाखिल हो जाता है, फी बाबिल हद्दी हद के बाब में। भाई याद रखो अगर एक आदमी पर दो हदें आ रही हैं, एक हद के अंदर मसलन उसका हाथ काटा जाएगा उसने चोरी की है और दूसरी हद के अंदर उसको रजम किया जाएगा क्योंकि यह मुहसन है और इसने जिना किया है, तो इस सूरत में याद रखो हमारे फुकहा फरमाते हैं कि आप जब इसको रजम करना है तो हाथ काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब इसको रजम करेंगे जब इसकी जान चली गई तो उसके अंदर ही उज़्ब भी चला गया, बात समझ में आ गई। तो लिहाजा जब दो हदें जमा हो जाएं, एक में उस मुजरिम की जान जा रही है और दूसरे में जान से कम है, तो फिर उसी जान लेने पर ही इक्तिफा कर लिया जाएगा। तो कहते हैं वली अन्नमा दून नफ्सी, इसलिए क्योंकि नफ्स से जो कम होता है, जैसे यहां पर है ये डाकू का हाथ और पांव काटेंगे तो देखो ये उसकी जान नहीं ली जा रही, कत्ल नहीं किया जा रहा, सिर्फ हाथ और पांव काटे जा रहे हैं, तो ये है मादून नफ्स, और कत्ल किया जाएगा या सूली दी जाएगी तो उसमें उसकी जान चली जाएगी, और हुदूद के बाब में नफ्स से जो कम होता है वो भी उसी नफ्स की सजा में दाखिल हो जाता है। तो कहते हैं वली अन्न मादून नफ्सी, और इसलिए क्योंकि नफ्स से जो कम सजा होती है यदखुलु फिन नफ्सी, वो नफ्स की सजा में ही दाखिल हो जाती है, फी बाबिल हद्दी हद के बाब में, का हद्द सरिकति वर रजमी, जैसे कि चोरी और रजम की हद है कि अगर चोरी और रजम इकट्ठे हो गए तो सिर्फ रजम पर ही इक्तिफा किया जाएगा। आगे देखिए वलहुमा, और शेखैन रहमहुमल्ला की दलील यह है, इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला तो फरमाते थे कि सिर्फ इनको कत्ल कर दिया जाए या सूली दे दी जाएगी, उसके साथ हाथ और पांव नहीं काटे जाएंगे, जबकि शेखैन रहमहुल्ला फरमाते नहीं, उसके साथ हाथ और पांव को भी काटा जा सकता है। तो अब उसकी दलील दे रहे हैं, कहते हैं वल्लहुमा, शेखैन रहमहुल्ला की दलील यह है कि अन्नहादिही उकूबतुन वाहिदतुन, कि ये एक ही सजा है, ये जो हाथ और पांव काटा जाए और फिर कत्ल किया जाए, या हाथ और पांव काटा जाए और फिर सूली दी जाए, ये एक ही सजा है, अगरचे कई उमूर हैं, हाथ भी काटेंगे पांव भी काटेंगे और कत्ल भी करेंगे, तो चीजें तो कई हैं लेकिन सजा एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग सजाएं हैं। तो कहते हैं वलहुमा, और शेखैन रहमहुल्लाह की दलील यह है कि अन्नहादिही उकूबतुन वाहिदतुन, कि ये एक ही सजा है, तगल्लज़त जो सख्त हो गई है, लितगल्लुज़ी सबबिहा, इसके सबब के सख्त होने की वजह से, चूंकि सजा का सबब बड़ा सख्त है यानी जुर्म बड़ा सख्त है इसलिए सजा भी बड़ी सख्त है, लेकिन है एक ही सजा। भाई इसका सबब क्या है? कहते हैं वह हुआ तफवीतुल अमनी अल तनाही बिल कत्ली व अखजिल माली। वह हुआ तफवीतुल अमनी और वो अमन को खत्म करना है अल तनाही आखिरी हद तक बिल कत्ली व अखजिल माली, कत्ल और माल लेने के जरिए। यानी जब इन डाकुओं ने कत्ल भी किया है और माल भी लूटा है तो इन्होंने अमन को खत्म किया आखिरी हद तक। भाई इससे ज्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था, तो ये आखिरी हद तक चले गए अमन को खत्म करने के लिए। तो कहते हैं वह हुआ तफवीतुल अमन अल तनाही और वो अमन को खत्म करना है आखिरी हद तक बिल कत्ली व अखजिल माली, कत्ल और माल लेने के जरिए। वलिहादा कान कत्उल यदि व रिजली मान फिल कुबरा हदं वाहिदा। कहते हैं इसी वजह से तो चोर का सिर्फ हाथ काटा जाता है और डाकू का हाथ भी काटा जाता है और पांव भी। तो हाथ और पांव काटने का यह मतलब नहीं है, ये दो सजाएं हैं। सरीका सुगरा के एतबार से तो ये दो सजाएं हैं, हाथ का काटना अलग हद, पांव का काटना अलग हद चोरी के अंदर, लेकिन डाके के अंदर ये एक ही हद है क्योंकि जुर्म बड़ा सख्त है। भाई तो ये माना है वलिहादा कान कत्उल यदि व रिजली मान, और इसी वजह से हाथ और पांव का इकट्ठा काटना फिल कुबरा सरीका कुबरा के अंदर हदन वाहिदन ये एक ही हद है। वह इन कान फिस सुगरा हदैनी, अगरचे ये सरीका सुगरा के अंदर दो हदें हैं। व तदाखुल फिल हुदूदी लाफी हदिन वाहिदिन। इमाम मोहम्मद रहमतुल्ला फरमाते थे कि अगर दो हदें जमा हो जाए, एक में जान जा रही है और एक में जान से कम है, तो फिर जान लेने पर ही इक्तिफा कर लिया जाएगा, यानी उन हुदूद में तदाखुल कर दिया जाएगा। हम कहते हैं कि अलग अलग हुदूद हों उनमें तो तदाखुल हो सकता है, एक ही हद के अंदर तदाखुल नहीं हो सकता। मसलन एक शख्स ने जिना किया है और उसकी हद है 100 कोड़े, तो अब इमाम तदाखुल कर दे और कहे भाई इसको एक ही कोड़ा लगा दो, सबका तदाखुल हो गया। नहीं भाई, एक हद के अंदर तदाखुल नहीं होता, दो या ज्यादा हदों के अंदर तदाखुल हो सकता है। तो कहते हैं वह तदाखुल फिल हुदूदी लाफी हदिन वाहिदिन, और तदाखुल कई हुदूद में होता है एक हद में नहीं। सुम मजा करा फिल किताबी तखीर बैन सल्बी व तरकी ही। फिर भाई मतन में आया था कि इमाम को इख्तियार है, इमाम को इख्तियार है कि चाहे कत्ल पर ही इक्तफा कर ले और चाहे सूली दे दे। तो मतन से मालूम हुआ इमाम को कत्ल और सूली में इख्तियार है। तो साहिब हिदायत बतलाएंगे यह जाहिर रिवायत है, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, सिर्फ कत्ल पर इक्तफा नहीं किया जा सकता, सूली भी देना पड़ेगी ताकि लोगों को खूब अच्छी तरह इबरत हो जाए। तो कहते हैं सुम मजा करा फिल किताबी तखयीर बैन सल्बी व तरकी ही, और फिर साहिब खुदूरी ने किताब के अंदर सूली देने और सूली को छोड़ने के दरमियान तखयीर को जिक्र किया कि सूली दे या सूली को छोड़ दे, इसमें इमाम को इख्तियार है। वह हुआ जाहिर रिवायती, और यही जाहिर रिवायत है। वह अन अबी यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला से रिवायत है कि अन्नहु ला यतरुकुहु, कि इमाम जो है सूली देने को नहीं छोड़ सकता। लिअन्नहु मनसूसुन अलैही, क्योंकि सूली मनसूस अलैह है, इस पर नस लाई गई है, नस के अंदर इसका जिक्र है। तो कहते हैं कि इमाम इस सूली को नहीं छोड़ सकता। लिअन्नहु मनसूसुन अलैही, क्योंकि सूली मनसूस अलैह है, यानी नस के अंदर इसका जिक्र किया गया है। वल मकसूद तशहीरु, और इस सूली के जरिए मकसूद जो है वो तशहीर है कि इस बात की खूब अच्छी तरह शोहरत हो जाए। लिया तबीरा भी ही गैरूहू, ताकि इबरत हासिल करें इसके लिए और लोग। तो कहते हैं लिया तबीरा भी ही गैरूहू, ताकि इसके अलावा और लोग इसके जरिए इबरत हासिल करें। व नहनु नकूलू, और हम कहते हैं असलु तशहीर बिल कत्ली, कि असल तशहीर कत्ल के जरिए ही है। जब इसको कत्ल कर दिया गया तो शोहरत होगी, सब तक बात पहुंचेगी। वल मुबालगा तो बिसल भी, और सूली देने के जरिए तो मुबालगा होगा। असल तशहीर तो कत्ल के जरिए ही है, हां सूली देगा तो ज्यादा शोहरत हो जाएगी। सूली देगा तो ज्यादा शोहरत हो जाएगी। तो जब असल शोहरत कत्ल के जरिए हासिल हो गई तो सूली देना इमाम पर लाजिम नहीं होगा। वनहनु नकूलू, और हम कहते हैं असलु तशहीर बिल कत्ली, कि असल तशहीर कत्ल के जरिए है। वल मुबालगा तो बिसल भी, और सूली देने के जरिए मुबालगा है। फयुखय्यरु फीही, तो उसमें इमाम को इख्तियार होगा। सुम्मा काला, फिर साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयुस्लबु हय्या। मैंने आपको बतलाया था कि जब डाकुओं को सूली दी जाएगी तो बाज उलमा फरमाते हैं इनको कत्ल किया जाएगा और फिर सूली दे दी जाएगी, यानी उस लकड़ी पर इनको लटका दिया जाएगा कई दिन के लिए। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि नहीं, सूली पर इनको जिंदा ही लटकाया जाएगा और फिर इनके पेट और सीने पर नेजे मार मारकर इनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो कहते हैं सुम्मा काला, फिर साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयुस्लबु हय्या, और इनको जिंदा ही सूली दी जाएगी। वयुबअजु बतनुहु, बअजा या बअजु के माने होते हैं फाड़ना। वयुबअजु बतनुहु, और फिर इस डाकू के पेट को फाड़ा जाएगा। बिरुमहिन, नेजे के जरिए। इला अन यमूता, यहां तक कि वो मर जाए। वह मिसलुहु अनिल करखी रहमहुल्लाह, और इसी के मिसल रिवायत किया गया है इमाम करखी से भी। साहिब कुदूरी ने भी यही जिक्र किया कि जिंदा सूली देंगे, और इमाम करखी से भी इसी के मिसल नकल किया गया है कि जिंदा को सूली देंगे। वह अन तहावी ये रहमहुल्लाह, और इमाम तहावी रहमहुल्लाह से रिवायत किया गया है कि अन्नहु युक्तलु सुम्मा युस्लबु, कि उस डाकू को कत्ल किया जाएगा फिर सूली दी जाएगी। तवक्कियन अनिल मुसलती, मुसला से बचने के लिए। मुसला भाई आप जानते हैं, मुसला यह है कि मरने वाले के कान काट दिए, नाक काट दी, होंठ काट दिए, उसकी आंखें निकाल दी, तो इसको कहते हैं मुसला, यानी शकल बिगाड़ देना, शकल बिगाड़ देना। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह से रिवायत है कि इनको कत्ल किया जाएगा और फिर सूली दे दी जाएगी, यानी पेट में नेजे मार मार कर इनको कत्ल नहीं करेंगे, वरना तो ये मुसला हो जाएगा। और मुसले से तो शरीयत ने मना किया है भाई, मुसले से तो शरीयत ने मना किया है भाई। तो याद रखो, उलमा जवाब देते हैं, जवाब देते हैं कि भाई नेजे के जरिए पेट फाड़ना ये मुसला नहीं कहलाता। अरबों की आदत थी, वो नेजे के जरिए भी कत्ल करते थे दूसरों को, और इसको वो मुसला नहीं कहते थे, लिहाजा ये मुसला नहीं है। इनको जिंदा सूली देकर इनको नेजे के जरिए कत्ल किया जाएगा। और अगर आपकी बात मान ली जाए कि ये मुसला है, ये मुसला है, तो उसका भी जवाब कहते हैं कि अगर ये मुसला भी है तो ये खास किस्म का मुसला है, और वो मुसला जिससे मना किया गया था उससे इसका इस्तेसना है, और मुसले की इजाजत तो नहीं लेकिन इस मुसले की इजाजत है। बात समझ में आ गई। वानी तहावी ये रहमहुल्ला, और इमाम तहावी रहमला से रिवायत है अन्नहु युक्तलु सुम्मा युस्लबु, कि इस डाकू को कत्ल किया जाएगा फिर सूली दी जाएगी। तवक्कियन अनिल मुसलती, मुसला से बचने के लिए। वजहुल अव्वली, पहले कौल की वजह, पहला कौल क्या आया कि इनको जिंदा सूली दी जाएगी, तो कहते हैं वजहुल अव्वली, पहले कौल की वजह। वहुवल असहु, और वो कौल ज्यादा सहीह है, पहला कौल ज्यादा सही है, इमाम तहावी की रिवायत भी सही लेकिन पहली रिवायत ज्यादा सही है। तो कहते हैं वजहुल अव्वली, पहले कौल की वजह। वहुवल असहु, इस हाल में कि वो ज्यादा सहीह है। कि अन नसल बाला हादल वजही, कि इस तरीके पर सूली देना। अब लघु फिर रदई, ये ज्यादा बेहतर है फिर रदई, मना करने में ये ज्यादा बेहतर है मना करने में, भाई इसकी वजह से लोगों को ज्यादा इबरत हासिल होगी और कोई आइंदा डाका डालने की जरूरत नहीं करेगा। तो कहते हैं कि अन नसल बाला हाजल वजी, इस तरीके पर सूली देना। अब लगू फिर रदई, ये बेहतर है मना करने में। वह हुल मकसूद भी ही, और मना करना ही इसके जरिए मकसूद है कि कोई और डाका ना डाले। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला युसलबु अक्सर मिन सलासती अय्यामिन, और इनको तीन दिन से ज्यादा सूली नहीं दी जाएगी, यानी तीन दिन तक इनको लटका रहने देंगे और फिर इनको वहां से हटा देंगे। वजह यह कि तीन दिन के बाद इनसे बदबू आना शुरू हो जाएगी और जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होगी। तो कहते हैं वला युसलबु अक्सर मिन सलासती अय्यामिन, और तीन दिन से ज्यादा सूली नहीं दी जाएगी। लिअन्नहु ततगय्यरु बादहा, इसलिए क्योंकि उसके बाद उस डाकू का बदन मुतगय्यर हो जाएगा, यानी उसका बदन खराब हो जाएगा। फयतअज़्ज़न्नासु बिही, तो इससे लोगों को अजियत होगी, लोगों को तकलीफ होगी, लिहाजा उसके बाद उसको दूर कर देंगे। वअन अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रिवायत है। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, मैंने बतलाया था कि ये काज़िल कुज़ात थे, ये चीफ जस्टिस थे भाई, वो फरमाते हैं कि अन्नहु युतरकु अला खशबतिन, कि इसको छोड़ दिया जाएगा लकड़ी पर, हत्ता यतक़त्तअ, यहां तक कि ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, वयस्कुता, और गिर जाए, टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए, ताकि खूब लोगों को इबरत हो जाए, भाई मुद्दत तक वहां लटका हुआ है तो आइंदा कभी किसी की जरूरत न होगी। भाई भाई याद रखो, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अहम चीज जो है एक इंसाफ है और एक वहां अमनो अमान है। जिस मुल्क में इंसाफ हो और जिस मुल्क में अमनो अमान हो, वो इतनी रफ्तार से तरक्की करता है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। चुनांचे तालिबान का जब पहला जमाना था, जब मुल्ला उमर रहमहुल्ला हयात थे, तो उनकी खिलाफत का जमाना था, उस जमाने के अंदर जहां जहां तालिबान कब्जा करते जाते थे वहां पर शरई हुदूद नाफिस कर देते थे भाई। हालांकि अभी तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया था, वो हालत जंग में थे, बेसरो सामानी की हालत में थे, लेकिन जिस जिस इलाके में कब्जा करते जाते थे शरई हुदूद को नाफिज करते चले जाते थे। और वो अफगानिस्तान जो साल हर साल से जंगों के अंदर डूबा हुआ था, बे इंतहा गुर्बत थी, लेकिन उसके बावजूद इस्लामी शरीयत की बरकत इतनी थी कि चोरी और डाके का निशान खत्म हो गया, लोग अपना सामान खुले आम लेकर फिरते थे, किसी को फिक्र ही नहीं होती थी क्योंकि मेरे सामान को हाथ भी लगा सकता है। चुनाचे वाली साहब रहमतुल्लाह ने जिंदगी की जो आखिरी तकरीर फरमाई वफात से 20-25 दिन कबल, उसके अंदर भी उन्होंने वाकया जिक्र फरमाया कि एक आदमी अफगानिस्तान गया उसी जमाने के अंदर, तो वो आदमी खुद बतलाता है कि मैं कंधार पहुंचा, वहां मेरा कोई जानने वाला था, उसने कहा था कि आप जब पहुंच जाएंगे मैं वहां आपको लेने के लिए मौजूद होऊंगा। तो कहते हैं लेकिन वहां कंधार के अंदर जब मैं बस से उतरा तो वो शख्स अभी तक मुझे लेने नहीं आया था, मालूम नहीं कोई उजर पेश आ गया या क्या वजह थी। अब मैं परेशान हो गया, पाकिस्तान से मैं वहां गया हूं और मुझे ना उस इलाके के ना जगहों का पता है ना कि और किसी से वाकफियत है भाई। तो कहते हैं अब मैं बड़ा परेशान हो गया, शहर के अंदर सड़क के किनारे खड़ा हूं, सामान मेरे पास मौजूद है, तो एक आदमी से मैंने पूछा कि भाई फुला जगह मैं जाना चाहता हूं, तो उसने मुझे रास्ता वगैरह समझाया और कहने लगा कि आप चले जाओ और सामान यहीं छोड़ दो, वापस आकर सामान ले लेना। तो कहते हैं मैंने उसकी तरफ यूं हैरत से देखा कि आदमी ठीक है या पागल है, भाई पाकिस्तान में आपको इस तरह कोई कहे कि अपना सामान यहीं छोड़ के चले जाओ सड़क के किनारे और फिर आकर ले लेना, तो आप यकीनन उसको पागल ही समझेंगे। तो उस आदमी ने जब मुझे यूं कहा तो मैंने एकदम हैरत से उसकी तरफ देखा और मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हो भाई, ये सामान है, इसके अंदर कीमती चीजें हैं और आप कह रहे हैं यहीं छोड़कर चले जाओ। तो वो आदमी कहने लगा कि अगर इसके अंदर नोट भी हैं तो निकाल कर ऊपर रख दो, लेकिन कोई पत्थर रख दो कि हवा वगैरह से आपके वो नोट न उड़े, तीन दिन के बाद भी आओगे तो ये सामान यहीं पड़ा मिलेगा, किसी की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे सामान को हाथ लगा दे। भाई ये इस्लामी निजाम की बरकत थी भाई, यहां तक के अखबारात के अंदर भी ये बात आई थी कि जर्मनी वालों ने बाकायदा तालिबान के वफद को बुलवाया। जर्मनी वाले कहने लगे कि आप हालत जंग में हैं लेकिन आपके मुल्क में इतना अमनो अमान है कि कोई एक आदमी भी जुर्म नहीं करता और हमारे पास तमाम वसाइल हैं, हमने पुलिस को हर तरह का असलहा दिया हुआ है, हर तरह की कंप्यूटर और गाड़ियां और हेलीकॉप्टर सब कुछ दिया हुआ है और इन पर हम करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में जुर्म है कि बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? तो तालिबान ने कहा कि यह हमारा कोई कमाल नहीं, ये तो शरीयत का कमाल है। मालूम हुआ आज भी शरीयत को अगर नाफिज कर दिया जाए तो उस मुल्क में इतना अमनो अमान आ जाएगा कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और वो मुल्क इतनी रफ्तार से तरक्की करेगा कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। भाई देखो, जहां अमनो अमान नहीं होता और इंसाफ नहीं होता तो वहां लोग अपना माल बाहर निकालते हुए डरते हैं कि अगर मैंने माल बाहर निकाला तो मुझे कोई लूट ना ले, या किसी ताजिर से मेरा वास्ता पड़ा वो मेरा माल दबाकर ही ना बैठ जाए। यहां तो ऐसा ही है पाकिस्तान के अंदर, आप किसी के साथ भी कोई माली मामला करते हैं तो फिर आपके पैसे वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां इंसाफ हो और अमनो अमान हो फिर वहां पर लोग माल घर के अंदर नहीं रखते कि ये तो साल गुजरेगा मुझे हर साल ज़कात देनी पड़ेगी और माल तो कम ही होता चला जाएगा। वो हर शख्स कोशिश करता है कि अपना माल मैं कहीं पर खर्च करूं ताकि ये माल बढ़ता चला जाए, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां और कारखाने बनते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और मुल्क बड़ी रफ्तार से तरक्की करता चला जाता है। भाई चुनाचे माहिरीन फरमाते हैं कि अगर तालिबान को 10-15 साल का अरसा मिल जाता कि वो अमनो अमान के साथ वो हुकूमत करते और ये अमरीकी और यहूदी शरारत न करते उनकी हुकूमत खत्म करने की, तो फिर तालिबान ने इतनी रफ्तार से तरक्की करनी थी कि सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन जाना था उन्होंने चंद सालों में। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बताया भी कि तालिबान अभी हालत जंग में थे और जर्मनी वाले उनको बुला रहे हैं कि आइए हमें भी जरा मशवरा दीजिए कि किस तरह हम इन जराइम पर काबू पा सकते हैं। भाई तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला से रिवायत है कि अन्नहु युतरकु अला खशबतिन हत्ता यतक़त्ता व यस्कुता, कि इस डाकू को उस लकड़ी पर ही लटका रहने दिया जाएगा यहां तक कि यह टुकड़े टुकड़े हो जाए और गिर जाए। लिया आता बीरा बिही गैरुहु, ताकि और लोगों को इससे इबरत हो। कुल ना, हम कहते हैं हासला ले अतबारु बिमा जकर ना हो, कि इबरत हासिल हो गई उस चीज से जो हमने जिक्र कर दिया कि 3 दिन तक लटका रहे तो इसे भी लोगों को इबरत हासिल हो गई। वन निहायतु गैरु मतलूबतिन, और इस इंतहा तक पहुंचना मतलूब नहीं है। लोगों को इबरत हासिल हो चुकी है जिसको हमने जिक्र कर दिया कि जब 3 दिन तक लटकाया है तो लोगों को अच्छी खासी इबरत हो चुकी है। वन निहायतु गैरु मतलूबतिन, और इस इंतहा तक पहुंचना मतलूब नहीं है। नफ से लोगों को डराना धमकाना है कि वो जराइम से बाज आ जाएं, इस हद तक पहुंचाना मतलूब नहीं है। भाई आगे देखिए, قال واذا قتل القاطع فلا زمان عليه في مال اخذه, صاحب قدوری فرماتے ہیں واذا قتل القاطع, اور جب ڈاکو کو قتل کر دیا گیا, جب ڈاکو کو بطور حد کے قتل کر دیا گیا اور اس نے کسی کا مال لوٹا تھا تو کہتے ہیں پھر زمان نہیں آئے گا, زمان نہیں آئے گا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قطع اور زمان جمع نہیں ہو سکتے۔ بھائی कहते हैं वह इदा कुतिल अल-क़ातिउ, और जब डाकू को कत्ल कर दिया गया, फला ज़मान अलैहि फी मालिन अख़ज़हु, तो इस डाकू पर कोई जमान नहीं है उस माल के अंदर जो इसने लिया था। एतबारम बिस्सरिकति सुगरा, सरिका सुगरा पर कियास करते हुए, वकद बयन्नाहु, और तहकीक उसको हमने बयान किया था कि कता और जमान जमा नहीं हो सकते, तो यहां पर भी जब हद जारी हो गई तो जमान उसके साथ नहीं आएगा। आगे देखिए, फइन बाशरल कतला अहदुहुम, बाशरा युबाशिरु के माने सरंजाम देना, फइन बाशरल कतला, अगर कत्ल को सरंजाम दिया है, अहदुहुम उन डाकुओं में से एक ने, उजरियल हद्दु अलैहिम बि अजमाइहिम, तो हद जारी की जाएगी उन सब पर। अगर एक डाकू ने भी कत्ल किया है तो उन सारों को हद के अंदर कत्ल किया जाएगा। कहते हैं फइन बाशर अल कत्ल अहदुहुम, अगर इन डाकुओं में से एक ने कत्ल सर अंजाम दिया है, उजरी अल हद अलैहिम बि अजमाइहिम, तो हद उन सब पर जारी की जाएगी। लिअन्नहु जज़ाउल मुहारबति, इसलिए क्योंकि यह हद जो है ये मुहारबा की जजा है, ये अल्लाह और रसूल के साथ जंग है, उनके अहकाम की नाफरमानी है, तो ये उसकी जजा है। वही ततहक्कु, और ये जंग पाई जाती है, बि अन यकून अल बाज़ु रिदअन लिल बाज़ी, बाई सूरत के इनमें से बाज़ जो हैं रिदअन, वो मददगार होते हैं, लिल बाज़ी बाज़ के। भाई डाकू जब डाका डालते हैं तो सारे मिलकर सामान नहीं लूटते, कुछ सामान लूटते हैं, कुछ वैसे मदद के लिए साथ खड़े होते हैं, या कुछ डाकू अगर कत्ल करते हैं तो सारे मिलकर तो कत्ल नहीं करते, कुछ मददगार होते हैं और कुछ कत्ल करते हैं, तो ये सारे मददगार हैं एक दूसरे के, लिहाजा सबको कत्ल किया जाएगा। तो कहते हैं लिअन्नहु जज़ाउल मुहारबती, इसलिए क्योंकि ये जो हद के अंदर सबको कत्ल किया जाएगा ये मुहारबा यानी जंग करने का बदला है। वही ततहक्ककु बिअन यकून अलबाज़ु रिद्अन लिलबाज़ी, और ये मुहारबा पाया जाता है बाई सूरत की ये एक दूसरे के मददगार होते हैं। हत्ता इज़ा ज़ल्लत अक़दामुहुम, यहां तक कि जब इनके कदम फिसलते हैं, यानी जब किसी एक तरफ ये कमजोर पड़ गए भाई, कोई उनके मुकाबले के लिए आ गया तो सारे वहां इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करते हैं, ये सब एक दूसरे के मददगार हैं। तो कहते हैं हत्ता इजा जल्लत अकदामुहुम, यहां तक कि जब इनके कदम फिसलते हैं, इनहाजू इलैहिम, इनहाजा यनहाजू के माने हैं जमा होना, इकट्ठे होना। कहते हैं हत्ता इजा जल्लत अकदामुहुम, यहां तक कि इनके जब कदम फिसलते हैं, इनहाजू इलैहिम, तो वो इनकी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। वह इन नमः शर्तुल कत्ल मिन वाहिदिम मिनहुम, और शर्त जो थी वो इनमें से किसी एक की तरफ से कत्ल था। वक़द तहक्कका, और वो तो पाया गया, इस हद के जारी करने की शर्त क्या थी कि इनमें से किसी एक की तरफ से कत्ल पाया जाए, जब कत्ल पाया गया तो अब शर्त पूरी हो गई, जब शर्त पूरी हो गई तो अब हद सब पर नाफिज की जाएगी। यह माना है वह इन नम शर्तुल कत्ल मिन वाहिदिम मिनहुम, और इस हद की शर्त जो है इनमें से किसी एक की जानिब से कत्ल का होना था। वक़द तहक्कका, और वो कत्ल तो पाया गया। काल वल कत्ल, काल और साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वल कत्ल व इन काना बी आसन, और वो कत्ल अगरचे लाठी के जरिए हो, औ बी हजरिन या पत्थर के जरिए हो, औ बी सैफिन या तलवार के जरिए हो, फहुआ सवा उन, तो ये बराबर है, यानी ये कत्ल चाहे पत्थर के जरिए हो, चाहे लकड़ी या चाहे तलवार के जरिए, ये सब बराबर हैं। लिअन्नहु यक़ऊ कत्अन, भाई देखिए आम हालात के अंदर अगर कोई शख्स दूसरे को कत्ल करता है तो किसास सिर्फ उस सूरत में आता है जब उसने आलाय कत्ल के साथ दूसरे को कत्ल किया हो। अगर उसने लकड़ियां मार मार के किसी दूसरे को कत्ल किया है या इसने उसका गला दबाकर उसे कत्ल किया है तो फिर इस सूरत में याद रखो फिर किसास नहीं आता बल्कि दियत आती है। किसास नहीं आता बल्कि दियत आती है। लेकिन यहां पर ये जिस तरीके से भी कत्ल कर दें इनको भी कत्ल किया जाएगा। तो ये माना है। कहते हैं वल कत्ल व इन कान बि आसन औ बि हजरिन औ बि सैफिन फहुआ सवाउन, और ये कत्ल अगर चे लाठी के जरिए हो या पत्थर के जरिए या तलवार के जरिए तो ये सब बराबर हैं। लिअन्नहु यक़ऊ क़त्अल लित्तरीक, इसलिए क्योंकि ये कत्ल जो है क़त्अ तरीक होकर वाक़े हुआ है। बि क़त्अल मार्रती, गुजरने वालों का रास्ता काट कर। मारा गुजर, मारा या मुर्रू का माना गुजरना, मारा तुन गुजरने वाले। कहते हैं लिअन्नहु यक़ऊ क़त्अन लित्तरीक़ी, इसलिए क्योंकि ये जो कत्ल है ये डाका होकर वाक़े हुआ है। बिक़त्अल मारती, गुजरने वालों का रास्ता काट कर। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वइल्लम युक़तलिल क़ातिउ वलम यअख़ुज़ मालन, भाई अब ये पांचवीं सूरत आ गई। पांचवीं सूरत आ गई। एक सूरत क्या थी कि इन्होंने अभी माल भी नहीं लिया और कत्ल भी नहीं किया और उससे पहले ही पकड़ लिए गए। दूसरी सूरत थी इन्होंने सिर्फ माल लिया है। तीसरी सूरत थी माल के सिर्फ कत्ल किया है। चौथी सूरत यह थी कि माल भी लिया है और कत्ल भी किया है। अब पांचवीं सूरत आ गई कि इन्होंने माल तो नहीं, माल भी नहीं लिया, कत्ल भी नहीं किया, लेकिन किसी को जख्मी किया है, किसी का हाथ या पांव काट दिया है या वैसे जख्मी किया है। तो ये पांचवीं सूरत आ गई। तो इस पर इश्काल होता है कि ऐ साहिब हिदायत, आपने तो हमें बताया था चार सूरतें हैं और ये अब आप पांचवीं और छठी सूरत भी आगे जिक्र कर रहे हैं। तो याद रखना कि ये चार सूरतें थी हद के एतबार से, उन चार सूरतों में हद आएगी और ये जो पांचवीं और छठी सूरत है इसके अंदर हद नहीं आएगी। तो जो साहिब हिदायत ने पीछे सूरतें जिक्र की वो मुतलकन वैसे जिक्र नहीं की, वो हद के एतबार से जिक्र की थी। तो कहते हैं वह इल्लम यकतुलिल कातिउ, और अगर डाकू ने कत्ल नहीं किया, वलम याखुज मालन, और माल भी नहीं लिया, वकद जा रहा, और इसने जख्मी किया है, उक्तुस मिन हुफी माफी हिल किसासु। अच्छा भाई याद रखो, अगर कोई आदमी किसी को जख्मी करे, तवज्जो है, जख्मी करे या हाथ पांव वगैरह काट दे, तो जहां पर मुमासलत हो सके तो किसास लिया जाएगा, और मुमासलत ना हो सके तो फिर किसास नहीं लिया जाएगा। मसलन एक आदमी ने दूसरे का हाथ कलाई के जोड़ से काट दिया, अब कलाई के जोड़ से तो दूसरे आदमी का हाथ भी काटा जा सकता है, तवज्जो है, लिहाजा इस सूरत में किसास आएगा और इस मुजरिम का भी हाथ काटा जाएगा। लेकिन अगर मुजरिम ने कलाई के दरमियान से हाथ काटा है, और कलाई के दरमियान तो हड्डी है, और हड्डी तो सख्त चीज है, वहां तो बराबरी नहीं हो सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिस तरह जिस जगह से मुजरिम ने हड्डी तोड़ी थी, आप बेआईन ही उसी जगह से हड्डी तोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ वो कता इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि सख्त चीज है, क्योंकि हड्डी सख्त चीज है, तो बेआईन ही उसी तरह काटना मुमकिन नहीं। तो मालूम हुआ यहां मुमासलत नहीं हो सकती, तो जिस जख्म के अंदर या जिस कता के अंदर बराबरी ना हो सके, वहां फिर किसास नहीं आता, बल्कि वहां फिर अर्श देना पड़ता है, अर्श या दियत। भाई बात समझ में आ गई, पूरी इंसानी जान का जो बदल है वो दियत कहलाता है, और जख्म वगैरह के अंदर जो माल है वो अर्श कहलाता है। तो कहते हैं कि इस डाकू ने कत्ल भी नहीं किया, माल भी नहीं लिया, वकद जा रहा, और इसने जख्मी किया है, तो उक्तुस मिन हो, तो इस डाकू से किसास लिया जाएगा, फी मा फी हिल किसास, उन जख्मों के अंदर जिनके अंदर किसास होता है, वह उखिदल अर्श मिन हो, और इस डाकू से अर्श यानी जमान लिया जाएगा, मिम्मा फी हिल अर्श, जिन जख्मों के अंदर अर्श यानी जमान आता है, वज़ालिका इलल औलियाई, और ये किसास लेना या ये अर्श लेना औलिया के जिम्मे है जी। ये किसास लेना और ये अर्श लेना ये औलिया के सुपुर्द है। क्या माना औलिया? यानी वो लोग जिनको जख्मी किया गया है, जो इस किसास के वली हैं, जो इस अर्श के वली हैं। और किसास का वली कौन है? जिसका हाथ काटा गया है, जिसको जख्मी किया गया है। तो ये किसास या अर्श लेना उन जख्मों के औलिया के यानी वो जख्मी होने वालों के सुपुर्द है। वो चाहे तो किसास ले ले और चाहे तो माफ कर दें। बात समझ में आ गई। ये माना है वज़ालिका इलल औलियाई, और ये किसास और अर्श वसूल करना उन जख्मों के औलिया के सुपुर्द है, यानी वो लोग जिनको जख्मी किया गया है वो ये किसास या अर्श लेंगे। इसलिए क्योंकि यहां पर इस जुर्म के अंदर हद नहीं है जी। इस जुर्म में हद नहीं है। जब हद नहीं है तो अब हकुल अब्द जाहिर हो गया, लिहाजा अब हकुल अब्द के मुताबिक सुलूक किया जाएगा, और वो जो जख्मी हुए हैं वो अपना किसास या अर्श वसूल करेंगे। तो कहते हैं वदालिका इलल औलियाई, और ये किसास या अर्श वसूल करना औलिया के सुपुर्द है, लिअन्नहु ला हद्द फी हादिहिल जिनायती, इसलिए क्योंकि इस जुर्म के अंदर हद नहीं है। मालूम हुआ हक शरीयत नहीं है। जब हक शरीयत नहीं है तो अब बंदे का हक जाहिर हो गया, तो वो अपना हक वसूल कर सकता है। तो कहते हैं लिअन्नहु ला हद्द फी हादिहिल जिनायती, इसलिए क्योंकि इस जुर्म के अंदर हद नहीं है। फज़हरा हक्कुल अब्दी, तो बंदे का हक जाहिर हो गया, वह हुआ मा ज़करनाहु, और वो है जो हमने जिक्र कर दिया कि किसास की सूरत में किसास ले ले और अर्श की सूरत में अर्श ले ले। फयस्तौ फीहिल वलीयू, तो इस हक को वसूल कर लेगा वली, यानी वो शख्स जो जख्मी हुआ है जी। जो जख्मी हुआ है वही किसास का वली है या वही अर्श का वली है, वो जो जख्मी है, तो वो जो वली है वो इस किसास या अर्श को वसूल करेगा। भाई ये माना है फयस्तौ फीहिल वलीयू, तो इस किसास या अर्श को वली जो है वो वसूल कर लेगा। व इन अखदा मालन सुम्मा जा रहा, छठी सूरत भाई, छठी सूरत कि अगर माल भी लिया है डाकू ने और जख्मी भी किया है, तो कहते हैं इस सूरत के अंदर फिर उस पर हद जारी की जाएगी। इस सूरत में हद जारी की जाएगी, और यूं समझो ये वही दूसरी सूरत है, क्योंकि माल लिया है। क्या किया है? माल। और माल लेने की सूरत में डाकू का हाथ और पांव काटे जाते हैं मुखालिफ जानिब से। अलबत्ता माल का जमान नहीं आता जब हद नाफिज कर दी जाए, तो यहां भी डाकू ने जख्म लगाया है किसी को, किसी का हाथ पांव काट दिया है या उसको जख्मी किया है, तो ये याद रखो नफ से जो कम जुर्म होता है किसी की जान में, नफ से कम जुर्म होता है किसी की जान के अंदर, तो उसके साथ माल वाला बर्ताव किया जाता है। तो लिहाजा यहां पर जब डाकू का हाथ और पांव मुखालिफ सीमत से काट दिए गए तो हद वसूल कर ली गई, और जब हद वसूल कर ली जाए तो फिर जमान नहीं आता, और इसने जो जख्मी किया है हाथ या पांव काटा है ये जान से कम जुर्म है, और जब जान से कम जुर्म है तो इसका हुक्म भी माल वाला है, और जब डाकू से हद वसूल कर ली जाए तो उस पर माल का जमान नहीं आता, तो इस जख्म का जमान भी डाकू पर नहीं आएगा। तो कहते हैं वह इन आखादा मालन, और अगर उस डाकू ने माल ले लिया, सुम्मा जा रहा फिर जख्मी किया, कुतियात यदुहू वरिजलुहू तो उसके हाथ और पांव को काटा जाएगा, व बतलतिल जिराहातु और ये जख्म जो है ये बातिल हो जाएंगे, यानी इनका जमान नहीं आएगा, लिअन्नहु लम्मा वजबल हद्दु हक्कन लिल्लाहि तआला इसलिए क्योंकि जब ये हद वाजिब हो गई बतौर अल्लाह के हक के, सकतत इस्मतुन नफ्सी तो जान की जो इस्मत और हिफाजत है वो साकित हो गई, हक्कन लिल अब्दि बतौर बंदे के हक के, बंदे के हक के तौर पर जान की इस्मत साकित हो गई, जैसे चोरी के अंदर ऐन चोरी से पहले माल की इस्मत मुंतकिल हो जाती थी अल्लाह की तरफ, तो वहां पर जो माल की इस्मत थी वो बतौर बंदे के हक के नहीं थी, तो यहां पर भी जान की जो इस्मत है वो बतौर बंदे के हक के बाकी ना रही, किसकी तरह मुंतकिल हो गई, अल्लाह की तरह मुंतकिल हो गई। ये माना है लिअन्नहु लम्मा वजबल हद्दु हक्कन लिल्लाहि तआला इसलिए क्योंकि ये हद जब अल्लाह के हक के तौर पर वाजिब हो गई, तो सकतत इस्मतुन नफ्स हक्कन लिल्अब्दि तो बंदे के हक के तौर पर नफ्स की इस्मत जो है वो साकित हो गई, कमा यस्कुतु इस्मतुल माली जैसे कि माल की इस्मत साकित हो जाती है। आगे देखिए वह इन उखिजा बादा माताबा, अब यहां से मवाने जिक्र कर रहे हैं वो चीजें कि अगर डाके के अंदर वो पेश आ गईं तो फिर अब हद जारी नहीं की जा सकती, और पहली सूरत बतलाएंगे कि अगर डाकुओं ने तौबा कर ली थी उसके बाद पकड़े गए तो अब हद साकित हो चुकी है, और इसका जिक्र नस के अंदर आता है, कुरान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं उसी आयत में जिसके अंदर डाकुओं की सजा जिक्र है, उसी आयत में आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जालिका लहुम खिज़्युन फी दुनिया कि ये इन डाकुओं के लिए दुनिया में रुसवाई है, ये जो इनको सजा दी जाएगी ये दुनिया में इनके लिए रुसवाई है, वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम और आखिरत में इनके लिए बड़ा अज़ाब है, इल्लल्लज़ीन ताबू मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली, मिन कबल अन तकदीरू अलैहिम कबल इसके कि तुम उन पर कादिर होते, यानी तुम्हारे काबू में आने से पहले उन्होंने तौबा कर ली, फअलमू तो जान लो अन्नल्लाह गफूरुर रहीम कि अल्लाह बहुत बख्शने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। तो नस से यह बात मालूम हो रही है कि डाकू काबू में आने से पहले अगर तौबा कर लें तो उनसे हद साकित हो जाएगी। तो कहते हैं वह इन उखिजा बादा माताबा और अगर उस डाकू को पकड़ा गया तौबा करने के बाद, वकद कतला आमदन और तहकीक इसने जानबूझ कर कत्ल किया था डाके के अंदर, तो फइन शा अल औलिया उ कतलूहू भाई देखिए अगर डाकू ने तौबा कर लिया लेकिन इसने डाके में कत्ल किया था तो अब हद तो नहीं आ सकती क्योंकि इन्होंने तौबा कर ली है, तो अब बंदे का हक जाहिर हो जाएगा और इसने कत्ल किया था तो अब मकतूल के औलिया इसको भी किसास में कत्ल कर सकते हैं और चाहे तो माफ कर सकते हैं और चाहे तो सुलह करके माल भी ले सकते हैं भाई। और यह भी याद रखना कि किसास कत्ले आमद में आता है, कोई जानबूझकर आलाय कत्ल के साथ दूसरे को कत्ल करे तो फिर किसास आता है, और कत्ले खता के अंदर दियत आती है वहां किसास नहीं आता। तो अगर इस डाकू ने जानबूझकर दूसरे को आलाय कत्ल से कत्ल किया था फिर तो मकतूल के औलिया किसास ले सकते हैं, और अगर डाकू से गलती से एक आदमी कत्ल हो गया था तो फिर ये किसास नहीं ले सकते, फिर दियत ही लेना पड़ेगी। तो कहते हैं वह इन उखिदा बादा माताबा, और अगर इस डाकू को तौबा के बाद पकड़ा गया, वकद कतला अमदन, इस हाल में किसने जानबूझ कर कत्ल किया था, फ इन शाह अल अलिया, तो अगर मकतूल के अवलिया चाहें कतलूहू तो वो इसको कत्ल कर दें किसास के तौर पर, व इन शाऊ अफ़ अनहू और अगर चाहें तो इसको मुआफ कर दें, ले अनल हदफी हाद हिल जिनायती ला युकामु बादत तौबती, इसलिए क्योंकि हद जो है इस जुर्म के अंदर वो कायम नहीं की जा सकती तौबा के बाद, ले इस्तिस्ना इल मजकूर फिन नफ्सी, उस इस्तिस्ना की वजह से जो नफ्स में जिक्र किया गया है, नफ्स के अंदर इनका इस्तेसना जिक्र है, और मैंने बताया ये सिर्फ इसी जुर्म के अंदर है, और हुदूद के अंदर तौबा भी कर ले फिर भी हद जारी की जाएगी। आगे देखिए, वली अन्न तौबत यतवक्कफु अला रद्दिल माली वला कत्अ फी मिस्लिही, और इसलिए क्योंकि तौबा जो है ये मौकूफ है माल के वापस लौटाने पर, वला कत्अ फी मिस्लिही और इस जैसी चीजों के अंदर कता नहीं होता। भाई ये तौबा मौकूफ है माल के वापस करने पर, डाकू की तौबा तब पूरी होगी जब वो माल वापस कर देगा, और जब माल वापस कर देगा तो फिर हाथ नहीं काटा जा सकता क्योंकि खुसूमत खत्म हो गई। और आपने पढ़ा था चोरी के मसले में कि चोरी के अंदर हाथ तभी काटा जा सकता है कि जब आखिर तक खुसूमत रहे, और यहां पर भी तौबा तब पूरी होगी जब डाकू माल वापस करेगा, और जब माल वापस कर दिया तो खुसूमत खत्म हो गई, और जब खुसूमत खत्म हो जाए तो फिर इस सूरत में कता नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? तो पहले साहिब हिदायत ने नकली दलील जिक्र की कि अगर ये डाकू तौबा कर लें तो फिर इन पर हद जारी नहीं की जाएगी क्योंकि नस के अंदर इसका इस्तेसना जिक्र है भाई। और अब दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं कि इस वजह से भी तौबा के बाद डाकुओं का हाथ नहीं काटा जा सकता कि तौबा के अंदर माल का वापस करना जरूरी है, और जब डाकू माल वापस कर देंगे तो लिहाजा खुसूमत खत्म हो गई, जब खुसूमत खत्म हो गई तो अब कता नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो साहिब हिदाया ने दो दलीलें जिक्र की, एक नकली और एक अकली। इस पर उलमा एतराज करते हैं कि ऐ साहिब हिदाया हमें यह बताइए कि इस तौबा के अंदर माल का वापस करना जरूरी है या नहीं, इस तौबा के अंदर माल का वापस करना जरूरी है या नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि माल का वापस करना जरूरी नहीं है तौबा के अंदर, तो फिर तो आपकी यह दलील ही सही नहीं है। आपने क्या कहा कि तौबा मौकूफ है माल के वापस लौटाने पर, हालांकि तौबा के अंदर तो माल का लौटाना जरूरी नहीं। तवज्जो है, फिर सुने। बाज उलमा इतराज करते हैं कि ऐ साहिब हिदाया आप हमें यह बताएं तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी है या जरूरी नहीं। अगर तौबा के अंदर माल का वापस करना जरूरी नहीं तो फिर यह दलील ही आपकी सही नहीं है, इसमें तो आप कह रहे हैं माल का लौटाना जरूरी है। और अगर आप यह कहते हैं कि तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी है, मालूम हुआ वो जो पीछे आपने जिक्र किया कि नस के अंदर तौबा का जिक्र है, तो मालूम हुआ उस तौबा के अंदर भी माल का लौटाना जरूरी है, तो वो तौबा तो पीछे जिक्र हो चुकी थी उसमें भी माल का लौटाना है, तो फिर ये तो कोई अलग दलील ना हुई, इसका जिक्र तो पीछे ही हो चुका है और आप इसको एक अलग दलील के तौर पर जिक्र कर रहे हैं। एतराज समझ में आया? फिर समझें, साहिब हिदाया पर एतराज होता है कि आप हमें यह बताइए तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी है या जरूरी नहीं। अगर तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी ही नहीं है तो फिर आप दलील कैसे पेश कर रहे हैं कि तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी है, तो फिर तो ये कोई अलग दलील ना हुई, पीछे जो नस के अंदर तौबा का जिक्र आया था मालूम अब उसके अंदर भी माल का लौटाना जरूरी था, तो ये भी वही दलील है, आप उसी दलील को दोबारा जिक्र कर रहे हैं, हालांकि ये तो कोई नई दलील नहीं है। तो उसका जवाब देते हैं उलमा कि यहां दरअसल उलमा फुकाहा के दो गुरोह हैं भाई। बाज उलमा फुकाहा फरमाते हैं कि इस तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी नहीं है, जैसे आम तौबा के अंदर होता है कि इंसान को अपने फेल पर नदामत होती है, वो अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करता है और आइंदा के लिए पक्का इरादा करता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, तो जैसे आम तौबा होती है इसके अंदर भी माल का लौटाना जरूरी नहीं। यानी नफ्स से तौबा के लिए माल का लौटाना जरूरी नहीं है, बाकी वो बंदों का हक वो माफ नहीं होगा तौबा की वजह से, सिर्फ हद साकित हो गई है, बाकी बंदों का माल जो इसने लूटा है वो देना पड़ेगा, वो हकुल आब्द है भाई, तवज्जो है। तो बाज उलमा फरमाते हैं कि इस तौबा के अंदर भी माल का लौटाना जरूरी नहीं है, माल लौटाए बगैर भी तौबा हो जाएगी, और बाज उलमा फरमाते हैं कि इस तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी है। ये डाकू वो सारा माल वापस लौटा दे उन लोगों को जिनका माल इसने लूटा था, फिर ही तौबा होगी और फिर ही इससे हद साकित होगी। तो यहां फुकहा के दो ग्रोह हैं, बास फुकहा फरमाते हैं इस तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी है, बास कहते हैं इस तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी नहीं। तो साहिब हिदाया ने यहां दोनों कौलों को जमा कर दिया, दोनों को जिक्र कर दिया। नस के अंदर जो तौबा थी वो एक दलील है, यानी उसमें वो तौबा जिक्र है कि जिनके नजदीक माल का लौटाना जरूरी नहीं, और ये दूसरों की दलील है जिनके नजदीक माल का लौटाना जरूरी है। तो गोया ये एक अलग मुस्तकिल दलील हो गई, बात समझ में आ गई। यह माना है वली अन तौबता यतवक्कफु अला रद्दिल माली, और इसलिए क्योंकि यह तौबा मौकूफ है माल के वापस करने पर, वला कता फी मिसलिही, और इस जैसी चीजों में तो कता नहीं होता, यानी जिसके अंदर खुसूमत खत्म हो जाए भाई। फजहरा हकुल अब्दि फी नफ्सी वल माली, तो जब हद साकित हो गई तौबा की वजह से तो हक शरा तो साकित हुआ लेकिन हकुल अब्द अब जाहिर हो गया। तो कहते हैं फजहरा हकुल अब्द फी नफ्सी वल माली, तो अब बंदे का हक जाहिर हो गया नफ्स और माल में। हत्ता यस्तौफियल वली युल किसास औ याफुआ, यहां तक कि वली जो है वो किसास वसूल कर सकता है औ याफुआ, या वो माफ कर सकता है। अब इख्तियार वली के हाथ में आ गया, अगर इस डाकू ने कोई कत्ल किया था तो वली किसास ले सकता है या ये माफ भी कर सकता है, और अगर डाकू ने माल लूटा था, अगर डाकू ने माल लूटा था तो उसका जमान देना पड़ेगा। तो ये माना है हत्ता यस्तौफी अल वली युल किसास औ याफुआ, यहां तक कि वली जो है वो किसास वसूल कर सकता है या वो माफ कर सकता है। वयजिबु जमानु, और इस तौबा करने वाले डाकू पर जमान वाजिब होगा। इजा हलका फी यदिही अविस्तहलका, जब वो माल इसके पास हलाक हुआ हो, अविस्तहलका या इसने खुद हलाक किया हो। यहां फिर एतराज होता है, आपने हमें कहा कि इस तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी है, फिर ही तौबा होगी, फिर ही हद साकित होगी। तो जब सारा माल लौटा दिया, तौबा हो गई, हद साकित हो गई, तो अब किस चीज का जमान देना है, माल तो वो सारा लौटा चुका है। तवज्जो है। तो जवाब उसका यह कि यह उन फुकहा के कौल पर है जिनके नजदीक इस तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी नहीं है। जब तौबा के अंदर माल का लौटाना जरूरी नहीं तो वैसे ही तौबा मोतबर हो गई, लेकिन बहरहाल अगर इसने माल लूटा है तो वह जमान देना पड़ेगा भाई। यह माना है वयजिबु जमानु इदा हलका फी यदिही अविस्तहलका, और जमान वाजिब होगा जब वो माल इस चोर के कब्जे में हलाक हो जाए या ये खुद उसको हलाक कर दे। वह इन कान मिनल कुत्ताए सबीयुन औ मजनूनुन, ये दूसरा मान्या आ गया कि जब हद साकित हो जाएगी। एक मान्या क्या था कि डाकू तौबा कर ले तो हद साकित हो जाती है, और दूसरा मान्या मैंने बतलाया था कि उन डाकुओं के अंदर अगर कोई बच्चा या मजनून या कोई करीबी महरम रिश्तेदार हो उन लोगों का जिन पर डाका डाला गया है। तो कहते हैं वह इन कान मिनल कुत्ताए सबीयुन औ मजनूनुन, और अगर उन डाकुओं में से कोई बच्चा हुआ औ मजनूनुन या कोई मजनून हुआ, औ ज़ू रहमिम महरमिम मिनल मक्तूई अलैही, या करीबी महरम रिश्तेदार हुआ मक्तू अलैह का, करीबी महरम रिश्तेदार हुआ मक्तू अलैह का, भाई ये जो डाका डालने वाला है ये है कातिअ, और जिस पर डाका डाला गया है वो है मक्तू अलैह भाई। तो कहते हैं अगर इन डाकुओं में कोई बच्चा हुआ या मजनून हुआ, औजू रहम महरम मिनल मकतू अलैही, या मकतू अलैह का करीबी महरम रिश्तेदार हुआ, सकतल हद अनिल बाकीना, तो बाकियों से भी हद साकित हो जाएगी। फल मजकूर फिस सबी वल मजनूनी कौल अबी हनीफ तवजु फरा रहिमहुमल्लाह, तो कहते हैं ये जो जिक्र किया गया है फल मज़कूर फी सबी वल मजनूनी, ये जो बच्चे और मजनून के बारे में जिक्र किया गया है, कौलु अबी हनीफा तव जुफरा रहिमहुमुल्लाह, ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह और इमाम जुफर रहमुल्लाह का कौल है, व अन अबी यूसुफ रहमुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु लौ बाशर अल उकला उ युहद्दुल बाकूना व अला हादा सरिकतु सुगरा। इमाम अबू यूसुफ रहमुल्लाह इख्तिलाफ करते हैं, वो फरमाते हैं कि डाकुओं के अंदर अगर बच्चा या मजनून हुआ तो फिर देखा जाएगा कि यह माल लूटने का काम उस बच्चे या मजनून ने किया है या किसी आकिल बालिग डाकू ने किया है, या इसी तरह अगर कत्ल किया है तो यह कत्ल बच्चे या मजनून ने किया है या किसी आकिल बालिग ने किया है। तो कहते हैं जिसने यह माल लूटने या कत्ल का फेल किया वो होगा असल और बाकी होंगे उसके ताबे। तो अगर असल पर हद आ सकती है तो असल पर हद आ जाएगी और ताबे को नहीं देखा जाएगा, और अगर असल पर ही हद नहीं आ सकती तो फिर ताबे पर भी हद नहीं आएगी। मसलन देखो वो माल जो है बच्चे और मजनून ने लूटा है, लेकिन साथ उनके और आकिल बालिग भी थे, तो जब माल बच्चे और मजनून ने लूटा है तो ये बच्चा और मजनून हुए इस डाके के अंदर असल, और बाकी आकिल बालिग जो है वो इनके हैं ताबे, और असल के ऊपर तो कता नहीं आ सकता क्योंकि बच्चे और मजनून को तो सजा नहीं दी जा सकती भाई। तो जब बच्चा और मजनून जो असल हैं, जो जुर्म करने वाले हैं, जब उन पर कता नहीं आ सकती तो इनके जो ताबे हैं और आकिल बालिग जो इनके साथ हैं उन पर भी हद नहीं आएगी। और अगर इसका बरक्स हुआ कि माल लूटने वाले आकिल और बालिग हैं और आकिल और बालिग पर तो हद आ सकती है, तो आकिल बालिग जो है उन पर हद आएगी, और वो जो बच्चा और मजनून जो इनके ताबे हैं उनमें अगर खलल आ भी गया है तो उससे कोई खराबी लाजिम नहीं आती। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु लौ बाशर अल उकलाउ, कि अगर सरंजाम दिया आकिलों बालिगों ने, यानी उन्होंने डाका सर अंजाम दिया है, कि अन्नहु लौ बाशर अल उकलाउ, कि अगर आकिल बालिग लोगों ने सर अंजाम दिया तो युहद्दुल बाकूना, तो बाकियों को हद लगाई जाएगी यानी बच्चे और मजनून के अलावा। व अला हादा सरिकतु सुगरा, और इसी इख्तिलाफ पर है सरिका सुगरा भी, सरिका सुगरा के अंदर भी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इसी तरह इख्तिलाफ फरमाते हैं। आपने मसला पढ़ा था, अगर एक ही घर के अंदर कई चोर दाखिल हो गए और फिर वहां से माल लेकर निकले, तो अगर इनमें अगर कोई बच्चा है या मजनून है तो फिर सबसे हद साकित हो जाएगी, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वहां भी देखा जाएगा कि चोरी का फेल करने वाला अगर बच्चा और मजनून है तो ये हुए असल, तो इन पर हद नहीं आ सकती तो बाकियों पर भी हद नहीं आएगी, और अगर बच्चा और मजनून वैसे साथ हैं, चोरी का फेल करने वाले और लोग हैं तो वो तो असल हैं, उन पर तो हद आ सकती है, तो उन पर हद आएगी, और बच्चा और मजनून जो उनके ताबे हैं उनमें अगर खलल आ गया है तो उस में कोई हरज नहीं है भाई। तो कहते हैं वाला हादा सरिकतु सुगरा, और इसी इख्तिलाफ पर है सरिका सुगरा भी, यानी उसमें भी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इमाम साहेब से इख्तिलाफ करते हैं। लहू, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अनल मुबाशिरा असलुन, कि इस फेल को सरंजाम देने वाला वो असल है, वर रिद अताबिउन, और जो मददगार है वो उसके ताबे है, वला खलला फी मुबाशरतिल आकिली, और आकिल आदमी के इस फेल को सरंजाम देने में कोई खलल नहीं, अगर आकिल ने यह डाका डाला है तो आकिल पर हद आएगी, अलबत्ता बच्चा और मजनून तो उसके ताबे हैं, ताबे के अंदर खलल का कोई एतबार नहीं। तो कहते हैं वला खलल फी मुबाशरतिल आकिल, और आकिल बालिग के इस फेल को सर अंजाम देने में तो कोई खलल नहीं है, वला एतबार बिल खलल फी तबाई, और ताबे के अंदर खलल के आने का कोई एतबार नहीं है, वफी अक्स ही यन आकिसुल माना वल हुक्म, और इसके बरअक्स सूरत के अंदर मुनाकिस हो जाएगा यानी बरअक्स हो जाएगा अल माना यानी इल्लत वल हुक्म और हुक्म, इसके बरअक्स होने की सूरत में हुक्म और इल्लत बदल जाएंगे, कि अगर बच्चे और मजनून ने फेल सर अंजाम दिया है डाके का तो फिर ये है असल, और आकिल बालिग जो इनके साथ हैं वो हैं ताबे, और जब असल पर हद नहीं आ सकती तो ताबे पर भी हद नहीं आएगी। ये माना है वफी अक्स ही, और इसके बरअक्स सूरत के अंदर यन आकिसुल माना वल हुक्म, कि इल्लत और हुक्म जो है वो बरअक्स हो जाएंगे। वलहुमा, अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील आ गई। वो फरमाते हैं कि अन्नहु जिनायतुन वाहिदतुन, कि ये डाका सारा का सारा एक ही जुर्म है। कामत बिलकुल्ली, और ये सब के साथ कायम है, यानी ये सब डाका डालने वाले हैं। फैदा लम यका फिअलु बाज़हिम मूजिबन, तो इनमें से बाज का फेल जब वो हद को वाजिब करने वाला नहीं है, बाज का फेल यानी बच्चे और मजनून का फेल जब वो हद को वाजिब करने वाला नहीं है, तो कान फेअलुल बाकीना, तो बाकी डाकुओं का जो फेल है बाज़ल इल्लती, वो तो बाज़े इल्लत है, वो तो बाज़े इल्लत है। यानी देखो गोया पूरे डाके का फेल ये जो आकिल बालिग हैं इन्होंने नहीं किया, कुछ इन्होंने किया है और कुछ वो बच्चे और मजनून ने किया है। तो अगर पूरे डाके का फेल या आकिल बालिग करते तो फिर इन पर हद ने आना था, लेकिन अब तो बच्चा और मजनून भी साथ शामिल हैं, तो मालूम हुआ कुछ डाका आकिल बालिग की तरफ से पाया गया और कुछ डाका मजनून और बच्चे की तरफ से पाया गया, तो लिहाजा आकिल बालिग की तरफ से डाका मुकम्मल नहीं, तो मालूम हुआ पूरी इल्लत नहीं है इस डाके की। जब पूरी इल्लत और सबब नहीं है वो इस डाके की, तो उन पर हद भी नहीं आएगी भाई। तो कहते हैं फैदा लम यका फिअल बाज़हिम मूजिबन, तो इनमें से बाज का फेल जो है जब वो हद को वाजिब करने वाला होकर वाकई नहीं हुआ, तो कान फिअलुल बाकीन बाज़ल इल्लती, तो बाकियों का फेल जो है वो तो इल्लत का बाज है, यानी वो तो बाज़े इल्लत है, पूरी इल्लत नहीं है। वबिही ला यसबुतुल हुक्म, और इसकी वजह से हद का हुक्म साबित नहीं हो सकता। फसार कल खाती इमाल हामिदी, तो ये इसी तरह हो गया जैसे खता करने वाला जानबूझ कर करने वाले के साथ। भाई याद रखो, कोई जानबूझ कर किसी को आलाय कत्ल से कत्ल करे तो उसको कत्ल किया जाता है, लिहाजा एक आदमी ने दूसरे को जानबूझ कर तीर मारा और वो हलाक हो गया, तो इस कातिल से किसास लिया जाएगा। लेकिन सूरत यह है कि इस कातिल का तीर और एक और आदमी का तीर दोनों इकट्ठे इस मकतूल को लगे। ये कातिल ने तो जानबूझकर तीर मारा था और दूसरा किसी और चीज को तीर मार रहा था, वो गलती से आकर इस आदमी को लग गया। तो अब इस आदमी के कत्ल में ये जानबूझकर तीर मारने वाला और वो गलती करने वाला दोनों शरीक हो गए। तो गोया जिसने जानबूझकर तीर चलाया है उसकी तरफ से पूरा कत्ल नहीं पाया गया। जब पूरा कत्ल उसकी तरफ से नहीं पाया गया तो उसको अब किसास में कत्ल भी नहीं किया जा सकता। तो यहां भी इसी तरह है कि बच्चा और मजनून जब साथ हैं तो आकिल बालिग की तरफ से पूरा डाका नहीं पाया गया बल्कि बाज़े डाका पाया गया, तो लिहाजा उन पर हद जारी नहीं की जा सकती। तो कहते हैं फसार कल खाती माल आमिदी, ये इसी तरह हो गया जैसे खता करने वाला जानबूझकर करने वाले के साथ हो, यानी दोनों इकट्ठे हो गए कत्ल में। वह अम्माजुर रहमिल महरमी फकद कीला, अच्छा भाई इन्होंने आपको बतलाया कि अगर डाकुओं में कोई करीबी महरम रिश्तेदार हुआ इन लोगों का जिन पर डाका डाला गया है, तो फिर भी हद साकित हो जाएगी। तो उसकी क्या वजह है? तो बास वो कहा फरमाते हैं ये उस सूरत में है जब वो माल जिसको इन्होंने लूटा है मुश्तरका था जी। वो माल क्या था? मुश्तरका था। मसलन काफिले वालों ने मिलकर सामान खरीदा है पैसे मिलाकर, मसलन गंदुम खरीद कर ला रहे हैं और ये सारी गंदुम इन सब काफिले वालों की मुश्तरका है, तो इसके अंदर उस आदमी का भी हिस्सा है जिसका करीबी महरम रिश्तेदार डाकुओं के साथ आया है। तो इस करीबी महरम रिश्तेदार ने डाकुओं के साथ मिलकर वो माल लूटा है जिसमें इसके रिश्तेदार का भी हिस्सा है, क्योंकि माल मुश्तरका था। तो इस सूरत में कहते हैं फिर हद सबसे साकित हो जाएगी, लेकिन आपको बतलाएंगे ज्यादा सही कौल यह है कि माल का मुश्तरका होना जरूरी नहीं है, बल्कि मुतलकन जब डाकुओं के अंदर कोई करीबी महरम रिश्तेदार हो काफिले वालों में से किसी आदमी का, तो फिर चाहे मुश्तरका माल लूटें चाहे और माल लूटें, तमाम सूरतों के अंदर हद साकित हो जाएगी, क्योंकि करीबी महरम रिश्तेदार पर हद नहीं आ सकती तो बाकियों पर भी हद नहीं आ सकती। तो कहते हैं अम्मा जुर रहमिल महरमी, और बाकी करीबी महरम रिश्तेदार फकद कीला, तो तहकीक कहा गया है تاویلہ کہ اس کی تاویل یہ ہے یعنی ان باقی لوگوں سے جو حد ساقط ہو جاتی ہے اس کی تاویل یہ ہے کہ اذا کان المال مشترکم بین المقطوع علیہم کہ جس وقت وہ مال مشترکہ ہو ان مقطوع علیہم کے درمیان وہ جتنے مقطوع علیہم ہیں یعنی جن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کے درمیان وہ مال مشترکہ ہو تو اب جب سب کا مال مشترکہ ہے تو اس آدمی کے رشتہ دار کا حصہ بھی اس کے اندر آ گیا تو لہذا اس ذو الرحم کے حق میں شبہ آ گیا اور جب شبہ آیا تو اس سے حد ساقط ہوئی اور جب اس سے حد ساقط ہوئی تو باقیوں سے بھی حد ساقط ہو گئی اس لیے کیونکہ اس نے وہ مال لوٹا ہے جو اس کے اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا تھا بھائی تو کہتے ہیں فقد قیلہ تو تحقیق کہا گیا ہے تاویلہ اس حد کے ساقط ہونے کی تاویل یہ ہے کہ اذا کان المال مشترکم بین المقطوع علیہم کہ جس وقت وہ مال مشترکہ ہو ان لوگوں کے درمیان جن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے والاصح اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہ مطلقن کہ یہ حد کا ساقط ہونا مطلقن ہے چاہے مال مشترکہ کو لوٹیں چاہے غیر مشترکہ کو لوٹیں تمام صورتوں میں جب ڈاکوؤں کے اندر ان کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہو تو پھر حد ساقط ہو جائے گی تو کہتے ہیں والاصح اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہ مطلق کہ یہ حد کا ساقط ہونا مطلق ہے لان الجنایت واحدۃ اس لیے کیونکہ یہ ڈاکہ یہ سارا ایک ہی جرم ہے علامہ ذکرنا ہو اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا اوپر بھائی یہیں پر ایک سطر پہلے امام زفر اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی دلیل گزری تھی ولہما انہ جنایت واحدۃ قامت بالکل تو وہاں انہوں نے بتلایا تھا کہ ایک ہی جرم ہے البتہ کئی افراد مل کر اس کو سر انجام دے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ لان الجنایت واحدۃ علی ما ذکرناہ اس لیے کیونکہ یہ جرم جو ہے ایک ہی ہے اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا فالامتناع فی حق البعض تو حد کا ممتنع ہو جانا بعضوں کے حق میں یوجب الامتناع فی حق الباقین یہ ثابت کرتا ہے حد کے ممتنع ہونے کو باقیوں کے حق میں بھی جب ایک پر حد نہیں آ سکتی تو باقیوں پر بھی حد نہیں آ سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جرم کے اندر آپ بعض لوگوں پر حد جاری کریں اور بعض پر حد جاری نہ کریں تو یہ معنی ہے فالامتناع فی حق البعض تو بعضوں کے حق میں حد کا ممتنع ہونا یوجب الامتناع فی حق الباقین یہ باقیوں کے حق میں بھی حد کے ممتنع ہونے کو ثابت کرتا ہے بخلاف ما اذا کان فیہم مستامن بھئی دوسری صورت اگر ان قافلے والوں میں کوئی مستامن ہے جو دار الحرب سے امان لے کر آیا ہے تو اس کا مال تو ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں تو کیا اس کی وجہ سے شبہ نہیں آئے گا کہتے ہیں بھئی اس کی وجہ سے جو مال کے عصمت میں خلل آیا وہ صرف اس کے مال میں خلل آیا ہے باقی قافلوں والوں کا مال تو مال معصوم ہے ہمیشہ کے لیے تو اس کی وجہ سے حد ساقط نہیں ہوگی تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا کان فیہم مستامن بخلاف اس صورت کے کہ جب ان قافلے والوں کے درمیان یعنی جن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کے درمیان کوئی مستامن ہو لان الامتناع فی حقہ اس لیے کیونکہ اس کے حق میں حد کا ممتنع ہونا لخلل فی العصمت وہ اس کی عصمت میں خلل کی وجہ سے ہے کہ اس کی جان اور مال ہمیشہ کے لیے معصوم نہیں ہے وہ ہوا یا خصوصہ اور یہ چیز تو اسی کے ساتھ خاص ہے یہ جو عصمت کے اندر خلل آیا ہے یہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے تو اس کی وجہ سے باقیوں کی عصمت میں کوئی شبہ نہیں آئے گا اما ہن الامتناع لخلل فی الحرز اور باقی یہاں پر جو حد کا ممتنع ہونا ہے لخلل فی الحرز وہ حرز کے اندر خلل کی وجہ سے ہے بھئی قریبی محرم رشتے دار ہے جب قریبی محرم رشتے دار ڈاکوؤں کے ساتھ ہے تو یاد رکھو یہ جو قافلہ جو ہے یہ سارا کا سارا ایک ہی حرز ہے جی اور جیسے قریبی محرم رشتے دار اپنے رشتے دار کے حرز میں بلا روک ٹوک آتا جاتا ہے تو یہ قافلہ بھی ایک حرز ہے اور اس کے اندر اس کا رشتے دار موجود ہے تو جب قریبی محرم رشتے دار ڈاکوؤں کے ساتھ ہے تو اس کے حق میں یہ حرز باقی نہ رہا جب حرز باقی نہ رہا تو شبہ آ گیا اور جب اس کے حق میں شبہ آیا تو باقیوں سے بھی حد ساقط ہو جائے گی یہ معنی ہے اما ہونا لمتنا اور باقی یہاں پر حد کا جو ممتنع ہونا ہے یہاں پر حد کا جو ممتنع ہونا ہے یعنی وہ قریبی محرم رشتہ دار کی وجہ سے جو حد کا ممتنع ہونا ہے لخلل فی الحرز وہ حرز کے اندر خلل کی وجہ سے ہے वल काफिला तो हिर्जुन वाहिदुन, और काफिला जो है वो एक ही हिर्ज है, वो एक ही घर के हुक्म में है। वह इजा सकत अल हद सार अल कत्ल इलल औलियाई, और जब हद साकित हो गई तो कत्ल जो है औलिया के सुपुर्द हो गया। अगर डाकुओं के अंदर बच्चा या मजनून शामिल है या कोई करीबी महरम रिश्तेदार शामिल है उन लोगों का जिन पर डाका डाला गया है, तो इस सूरत में हद साकित हो गई। जब हद साकित हो गई तो अब बंदों का हक जाहिर हो गया। तो अगर इन्होंने किसी को कत्ल किया है तो मकतूल के अवलिया इनसे किसास वगैरह ले सकते हैं। तो कहते हैं वह इदा सा कतल हद, और जब हद साकित हो गई सार अल कत्ल इलल औलियाई, तो कत्ल जो है वो औलिया के सुपुर्द हो गया। ले जहूरी हक अब्दी, बवजह बंदे के हक के जाहिर होने के, अलामा जकर ना हो, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि जब हद साकित हो जाए तो बंदे का हक जाहिर हो जाता है। फइन शाऊ कतलू, अगर वो मकतूल के औलिया चाहें तो इनको कत्ल कर दें। वह इन शाऊ आफाऊ, और अगर वो चाहें तो इनको माफ कर दें। वह इदा कता बाजुल काफिलती तरीका अलल बाज, भाई सूरत मसला ये कि डाकू काफिले के अंदर ही शामिल थे, और काफिला जब जंगल में पहुंचा तो वह डाकू तलवारें लेकर निकल आए और उन्होंने काफिले को लूट लिया। तो क्या अब इन पर हद आएगी या नहीं? कहते हैं नहीं भाई, इन पर हद नहीं आएगी, क्योंकि ये काफिले के अंदर थे, तो ये तो हिर्ज के अंदर थे, तो इनके लिए ये काफिला हिर्ज न रहा। बात समझ में आ गई? तो ये तीसरा मानेअ आ गया हद के कायम करने से। पहला मानेअ क्या था कि डाकू तौबा कर लें पकड़े जाने से पहले, और दूसरा मानेअ कि उन डाकुओं के अंदर कोई बच्चा हो या मजनून हो या कोई करीबी महरम रिश्तेदार हो उन लोगों का जिन पर डाका डाला गया है, और तीसरा मानेअ यह है कि वहां हिर्ज के अंदर खराबी आ जाए। कहते हैं वह ईदा कता बाजुल काफिलती तरीका अलल बाजी, और जब बाज काफिले ने रास्ता काट दिया बाज पर, यानी उन्हीं में से बाज लोगों ने डाका डाल लिया, लम यजिबिल हद, तो हद वाजिब नहीं होगी, ले अनल हिर्जा वाहिदुन, इसलिए क्योंकि हिर्ज एक ही है। फसारत इल काफिलतु का दारिन वाहिदतिन, तो ये काफिला जो है एक घर की तरह हो गया। वमन कता तरीका लैलन औ नहारन फिल मिस्री, भाई अब शहर के अंदर डाके का जिक्र आ गया। अगर कोई शहर के अंदर असलहे के जोर पर डाका डालता है या शहर के करीब, भाई शहर के करीब डाका डालता है, तो क्या इस सूरत में भी हद आएगी या नहीं? तो आपको बताएंगे कि नहीं, शहर के अंदर अगर कोई डाका डाले तो वहां डाकू फौरन भागने की कोशिश करता है, इसलिए क्योंकि लोगों की मदद पहुंच जाएगी, जबकि जंगल के अंदर तो कोई मदद के लिए आने वाला नहीं होता। और नीज इसी तरह शहर के करीब अगर कोई है तो वहां पर भी मदद पहुंच सकती है, लिहाजा वहां पर भी हद वाजिब नहीं होगी। तो कहते हैं वमन कता तरीका लैलन औ नहारन फिल मिस्री, और जिसने डाका डाला रात को या दिन को शहर के अंदर, औ बैन अल कूफती वल हीरती, कूफा और हीरा, याद रखो ये हीरा ये भी एक शहर था कूफा के साथ ही, और ये बिल्कुल करीब करीब शहर थे, यहां तक कि कूफा और हीरा के बाहर की जानिब जो आखिरी घर थे वो आपस में तकरीबन मिले हुए थे, भाई यानी बिल्कुल साथ साथ थे ये शहर, तो इसके बीच में अगर कोई डाका डालता है तो कहते हैं इस सूरत में भी हद वाजिब नहीं होगी। तो यह मालूम हुआ चौथा मानेअ आ गया हद के वाजिब करने से, कि शहर के अंदर डाका डाला है या शहर के करीब डाका डाला है तो इस सूरत में भी हद साबित नहीं होगी। तो कहते हैं वमन कता तरीका लैलन औ नहारन फिल मिस्री, और जिसने डाका डाला रात को या दिन को शहर में, औ बैन अल कूफती वल हीरती, या डाका डाला कूफा और हीरा के दरमियान, फलैस बिकातिअ तरीकी, तो ये शख्स कातिअ तरीक नहीं, ये डाका डालने वाला नहीं है, इस्तेहसानन, और यह हुक्म इस्तेहसानन है कि यह डाकू नहीं है, وفي القياس يكون قاطع الطريق, اور قیاس کے اندر یہ شخص بھی قاطع طریق ہے, یہ بھی ڈاکو ہے. وہو قول شافعی رحمہ اللہ, اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے. لوجودہ حقیقتن, اس لیے کیونکہ حقیقتن قطع طریق پایا گیا ہے, حقیقتن ڈاکا پایا گیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے شہر کے اندر ڈاکا ڈالے چاہے شہر کے قریب ڈاکا ڈالے, حقیقتن اس ڈاکو نے ڈاکا ڈالا ہے, لہذا اس پر حد واجب ہوگی. تو قیاس یہی تقاضا کرتا ہے. البتہ استحسانن ہمارے نزدیک اس ڈاکو پر حد ثابت نہیں ہوگی جو شہر میں ڈاکا ڈالے یا شہر کے قریب ڈاکا ڈالے. تو کہتے ہیں وفی القیاس یکون قاطع الطریق, اور قیاس کے اندر یہ شخص ڈاکا ڈالنے والا ہے. وہو قول شافعی رحمہ اللہ, اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی. لوجودہ حقیقتن, اس لیے کیونکہ حقیقتن ڈاکا پایا گیا ہے. آگے دیکھیے وعن ابی یوسف رحمہ اللہ, اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو چیف جسٹس گزرے تھے ان کی بات آ گئی. کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ یجب الحد, کہ حد واجب ہوگی. اذا کان خارج المصری, جب وہ ڈاکا شہر سے باہر ہو. و ان کان بقربی ہی, اگرچہ شہر کے قریب ہو. بھئی متن میں تو آیا شہر کے قریب ڈاکہ ڈالے پھر بھی حد نہیں, اور شہر کے اندر ڈاکہ ڈالے پھر بھی حد نہیں, لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ شہر کے قریب ڈاکہ ڈالے گا تو حد واجب ہوگی. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہ یجب الحد اذا کان خارج المصری, کہ حد واجب ہوگی جب وہ ڈاکہ شہر سے باہر ہو. و ان کان بقربہ, اگرچہ شہر کے قریب ہو. لانہ لا یلحقہ الغوث, اس لیے کیونکہ اس کو مدد نہیں پہنچ سکتی. غوث کسے کہتے ہیں؟ مدد کو, مدد. تو کہتے ہیں لانہ لا یلحقہ الغوث, اس لیے کیونکہ یہاں اس کو مدد نہیں پہنچ سکتی. وعنہ, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک اور روایت ہے. دوسری روایت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ ہے کہ شہر کے اندر کوئی ڈاکہ ڈالے اس پر بھی ڈاکو کی حد لگائی جائے گی, اور شہر کے قریب جو ڈاکہ ڈالے اس کو بھی حد لگائی جائے گی. اور یاد رکھو اسی قول پر فتویٰ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شہر کے اندر کوئی ڈاکہ ڈالے اس کو بھی حد لگائی جائے گی, اور شہر کے قریب کوئی ڈاکہ ڈالے اس کو بھی حد لگائی جائے گی. تو کہتے ہیں وعنہ, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے. ان قاتلوا نہارن بالسلاحی, کہ اگر ان ڈاکو نے لڑائی کی دن کے وقت اسلحے کے ساتھ, یعنی شہر میں, دن کے وقت شہر میں اسلحے کے ساتھ لڑائی کی. او لیلن بھی او بالخشبی, یا رات کے وقت انہوں نے لڑائی کی اسلحے کے ساتھ. او بالخشبی, یا لکڑی کے ساتھ. تو فہم قطاع الطریق, تو یہ ڈاکو ہیں, ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے. بھئی کیا وجہ ہے؟ دن کے وقت اسلحے کی قید لگائی, اور رات کے وقت اسلحے کے ساتھ ساتھ لکڑی کے ساتھ اگر لڑائی کی تب بھی وہ ڈاکو ہیں. کہتے ہیں وجہ یہ, کہتے ہیں لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا يُلْبِسُ, اس لیے کیونکہ اسلحہ مہلت نہیں دیتا. البسا یلبسو کا معنی ٹھہرانا, یعنی مہلت دینا. کہتے ہیں لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا يُلْبِسُ, کیونکہ اسلحہ مہلت نہیں دیتا. اسلحے سے تو فوراً ہی کسی آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے, اسلحہ تو فوراً انسان کو موت تک پہنچا دیتا ہے. تو کہتے ہیں لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا يُلْبِسُ, اس لیے کیونکہ اسلحہ مہلت نہیں دیتا. وَالْغَوْثُ يُبْطِئُ بِاللَّيَالِي, اور مدد جو ہے وہ دیر سے آتی ہے رات کے وقت. رات کے وقت مدد دیر سے آتی ہے, لہذا لاٹھی کے ساتھ بھی اگر راستہ کاٹا ہے تو یہ بھی ڈاکو ہے. بھائی آگے دیکھیے وَنَحْنُ نَقُولُ, اور ہم کہتے ہیں ان قطع الطریق بقطع المارتی, کہ ڈاکہ جو ہے وہ گزرنے والوں کا راستہ کاٹنے سے ہوتا ہے. ڈاکہ کسے کہتے ہیں؟ کہ گزرنے والوں کا راستہ کاٹا جائے اور وہ شہر سے باہر ہوگا. ڈاکہ جو ہے وہ راستے کو کاٹنے سے ہوگا, تو شہر کے اندر تو راستہ نہیں, راستہ تو باہر ہوگا, توجہ ہے. تو لہذا وہ سفر کا راستہ جو ہے اس کو کاٹنے کے ڈاکہ کہا جاتا ہے. اور نیز وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں مدد نہ پہنچ سکے, اور شہر کے اندر یا شہر کے قریب تو مدد پہنچ سکتی ہے, لہذا اس صورت میں حد ثابت نہیں ہوگی. بھائی तो कहते हैं वनहनु नकूलु, और हम कहते हैं इन नकत तरीकी के डाका जो है बिकत अल मारती, वो गुजरने वालों का रास्ता काटने से होता है। वला यतहक्कु ज़ालिका फिल मिस्री व बिकुर्बिम मिनहु, और ये शहर में या शहर के करीब नहीं हो सकता। लिअन्न ज़ाहिरा लुहूकुल गौसी, इसलिए क्योंकि जाहिर जो है मदद का पहुंचना है, शहर में होगा या शहर के करीब होगा वहां तो मदद पहुंच जाएगी फौरन। इल्ला अन्नहुम युखजून बिरद्दिल माली, हां अगर शहर के अंदर किसी ने डाका डाला है या शहर के करीब किसी ने डाका डाला है, हद तो नहीं आएगी, तो अलबत्ता बंदों के जो हुकूक हैं वो वसूल किए जाएंगे। यानी अगर किसी को कत्ल किया है तो मक्तूल के औलिया किसास ले सकते हैं, और अगर इन्होंने माल लूटा है तो वह माल भी वापस दिलाया जाएगा। भाई तो कहते हैं इल्ला अन्नहुम युखजून बिरद्दिल माली, मगर यह कि इनका मुआखजा किया जाएगा माल को लौटाने के साथ कि ये माल वापस लौटाएंगे। ईसालन लिल हक्की इलल मुस्तहिक्की, मुस्तहिक को उसका हक पहुंचाने के लिए। वयुअद्दबूना, और इनकी तादीब की जाएगी, यानी इनको कुछ सजा दी जाएगी, हद तो नहीं आएगी लेकिन इनको सजा दी जाएगी। वयुहबसूना, और इनको कैद में डाला जाएगा। लिर्तिकाबिहिमुल जिनाय, था इस वजह से कि इन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया है। वलौ कतलू, और अगर इन्होंने कत्ल किया है। फल अमरुफी ही इलल औलियाई, तो इसके अंदर मामला जो है उस मकतूल के औलिया के सुपुर्द है। लिमा बैन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि जब हद ना आए तो फिर हकुल अब्द जाहिर हो जाता है। आगे देखिए वमन खनका रजुलन हत्ता कतलहू, सूरत ये एक आदमी ने दूसरे आदमी का गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया, तो फिर इस सूरत में याद रखो दियत आएगी। भाई इस मुजरिम को हम किसास में कत्ल नहीं करेंगे, वजह यह कि शुबा आ गया और शुबे की वजह से किसास साकित हो जाता है। शुबा यह कि मालूम नहीं ये मुजरिम उसको कत्ल ही करना चाहता था या वैसे सिर्फ उसको डरा रहा था और वैसे उसने गला दबाया था, तो शुबा आ गया, शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है, तो फिर इस सूरत में दियत आएगी। भाई तो कहते हैं वमन खा नका रजुलन, और जिसने दूसरे आदमी का गला दबाया। हद ताकतलहू, यहां तक कि उसको कत्ल कर दिया। फदियतु अला आकिलती ही इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, तो इस कत्ल की जो दियत है वो उस मुजरिम की आकिला पर होगी, यानी उसके कबीले वाले सारे मिलकर ये दियत अदा करेंगे 3 साल के अंदर। वही मसअलतुल कत्ल बिल मुसक्कली, और ये कत्ल बिल मुसक्कल ही का मसला है। कत्ल बिल मुसक्कल, मुसक्कल कहते हैं वजनी चीज। भाई याद रखो कत्ले आमद के अंदर दूसरे को भी किसास में कत्ल किया जाता है, और मैंने बतलाया कत्ले आमद किसे कहते हैं कि कोई शख्स असलहे के जरिए दूसरे को कत्ल करे, या कोई ऐसी चीज है जो असलहे के कायम मकाम है, मसलन लोहे का सरिया, लोहे की हर चीज जो है याद रखो वो मौत तक पहुंचाने वाली है, लिहाजा वो भी असलहे के हुक्म में है। या इसी तरह कोई तेज धार की चीज है, मसलन तेज धार वाली लकड़ी है भाई, तेज धार वाला पत्थर है, तो इस सूरत के अंदर भी मालूम हुआ मुजरिम का इरादा ही कत्ल का था, लिहाजा इसको भी किसास में कत्ल किया जाएगा। लेकिन अगर किसी और चीज से कोई आदमी दूसरे को कत्ल करता है, मसलन एक बड़े भारी पत्थर के जरिए एक आदमी ने दूसरे को कत्ल कर दिया, तो साहिबैन फरमाते हैं बड़ा पत्थर किसी को मारा जाए तो वो भी मर जाता है, वो बचता नहीं है, लिहाजा इसके अंदर भी किसास आएगा, ये भी कत्ले आमद ही है। जबकि इमाम साहब फरमाते नहीं, किसी बड़े पत्थर के साथ किसी को कत्ल करे तो ये कत्ले आमद नहीं है, ये शिबह आमद है, आमद के मुशाबे तो है लेकिन कत्ले आमद नहीं, लिहाजा इसमें किसास नहीं आएगा, इसमें दियत आएगी। तो साहिब हिदायत यही बयान फरमा रहे हैं कि वही मसअलतुल कत्ल बिल मुसक्कली, और ये वजनी चीज के साथ कत्ल करने का ही मसला है, यानी किसी ने दूसरे आदमी का गला दबाया तो इमाम साहिब के नजदीक ये कत्ले आमद नहीं है, जबकि साहिबैन के नजदीक ये भी कत्ले आमद ही है। भाई तो कहते हैं वही मसअलतुल कत्ल बिल मुसक्कली, और ये वजनी चीज के साथ कत्ल करने का मसला है। वसनुबय्यिनु फी बाबिद दियाति इंशा अल्लाह तआला, और अन करीब हम इसको दियतों के बाद में बयान करेंगे। व इन खनका फिल मिस्री गैर मर्रतिन कुतिल बिही, भाई इमाम साहब का मसहब जिक्र हो गया कि अगर कोई शख्स दूसरे आदमी का गला दबाकर उसको कत्ल कर दे तो फिर इस कातिल को कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि शुबा आ गया कि मालूम नहीं इसका कत्ल का इरादा था या नहीं था, लिहाजा इस सूरत में दियत आएगी। लेकिन अगर एक ही शख्स ने कई आदमियों को गला दबाकर कत्ल कर दिया तो फिर इस सूरत में इसको कत्ल किया जाएगा। मालूम हुआ यह आदमी भी जमीन पर फसाद फैलाना चाहता है। कहते हैं वह इन खाना काफिल मिस्री, और अगर एक आदमी ने शहर में गला दबाया गैर मर्रतीन एक मरतबा से ज्यादा कुतिला भी ही तो इसकी वजह से उसको कत्ल किया जाएगा। लिअन्नहु सारा साइयन फिल अर्ज़ बिल फसादी, इसलिए क्योंकि ये जमीन के अंदर फसाद फैलाने वाला हो गया। फयुदफाउ शर्रुहु बिल कत्ली, लिहाजा इसके शर को दूर किया जाएगा कत्ल के जरिए। वल्लाहु आलमु, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस बिहादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।